नाम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयव सकंदर कंदमूलै हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयव सकंदर कंदमूलै हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयव सकंदर कंदमूलै अहंत हो अयम यह अद्री पर्वत अबला हे सखियों हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ यत क्योंकि राम कृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है सह सात गोगणयो गौवे बछड़े तथा ग्वाल बाल के तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को यत क्योंकि पानीय पेयजल के साथ सुयवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंद मूले तथा खाद्य कंदों से अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सखियों यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं पीने का पानी अति मुलायम घास गुफाएं फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य उपर्युक्त उद्धरण श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूर्यवस दुर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिसे अर्घ की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहाँ कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद शरीर सजाने के रत्न बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम् वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यम् सह गण ललिता श्री विशाखान्विता करुणा सिंधु दीन बंधुर जगतपते गोपेश गोपिका राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। सारे भक्तों से अनुरोध है, अपने मोबाइल फोन को कृपया आप बाहर निकाल के बंद कर दीजिए ताकि वो लेक्चर डिस्टर्ब ना करे। और छोटे बच्चों, माताओं से अनुरोध है, अपने छोटे बच्चों के ऊपर ध्यान दें ताकि वो भी ज़्यादा शोर ना करे। और थोड़ा आगे आगे आ जाइए ताकि जो बैठे हुए हैं बाद में जो आएंगे उनको बैठने के लिए जगह मिलेगा।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। दशम स्कंद से ये सुप्रसिद्ध गोवर्धन लीला, भगवान ने गोवर्धन धारण किया, उसके पीछे हम 8 शिक्षाओं पर गौर कर रहे हैं। तीसरी शिक्षा गोवर्धन पूजा का उद्घाटन करने हेतु भगवान ने गोवर्धन को पूजनीय बनाया और भगवान के नज़रों में जब कोई पूजनीय होता है तो वही उसकी समृद्धि है, वही उसकी साधना की सिद्धि है। तो रामायण से हम भरत जी इनका चरित्र, जो कि ऐसे पूजनीय हुए कि रामायण के टीकाकारों ने राम की तुलना में भरत का गुणगान मानो हजार मुख से किया। तो हम प्रसंग में वहां तक पहुंचे थे जब प्रभु श्री राम को कैकेयी और मंथरा के षड्यंत्र के वजह से वन में जाना पड़ा और भरत और शत्रुघ्न उन्हें वशिष्ठ मुनि बुलाते हैं दूतों को भेजकर, और कोई अंदाजा नहीं है भरत को कि उनकी गैर मौजूदगी में अयोध्या में क्या हुआ है। उनके स्वयं के पिता का निधन हो गया है, उनके आराध्य प्रभु श्री राम को अयोध्या से बहिष्कृत कर दिया गया है और वो भी उन्हें राजा बनाने के लिए, और वो भी उनके स्वयं की मां कैकेयी ने ये सब कुछ किया। तो जब वो अपनी मां कैकेयी के कक्ष में प्रवेश करते हैं और सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि मेरे पिता कहाँ हैं, ये नहीं पूछते कि आपके पति कहाँ हैं या राजा कहाँ हैं, महाराज दशरथ कहाँ हैं, मेरे पिता कहाँ हैं। तो हमने ये शिक्षा ली थी, 24वीं शिक्षा, जो कैकेयी से सीखने मिलती है कि कैकेयी वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी थी जिसे कहते हैं इनसेंसिटिव, हार्ड हार्टेड एंड इनसेंसिटिव, कोई संवेदना नहीं। और कैकेयी ने इस प्रश्न का जो जवाब दिया जिन शब्दों में, प्रश्न क्या था कि मेरे पिता कहाँ हैं, कैकेयी ने जवाब दिया, यागति सर्वभूतानां ताम गतिम स पिता गतिम। जहां पर साधारणतः जानवर पशु अपने मृत्यु के पश्चात जाते हैं, वहां पर तुम्हारे पिता गए हैं। अब देखिए, इस संसार में साधारणतः भी जब किसी की मृत्यु होती है तो चाहे कैसा भी जीवन वो जिया हो, मृत्यु के समय कम से कम लोग कुछ अच्छा बोल लेते हैं उसके विषय। यहां पर तो राम के पिता, ऐसे पुत्रों के पिता दशरथ, रघुकुल के वंशी, इक्ष्वाकु वंश के दशरथ, और क्या अपराध था दशरथ का, यहां तक कि कैकेयी ने जो वो दो वरदान मांगे जो कि जिसके वजह से दशरथ महाराज का निधन हुआ, ऐसे महाराज दशरथ अपने स्वयं के पति के विषय में कैकेयी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, या गतिम सर्वभूतानाम ता गतिम स पिता गतिम। तो हमने हमारे पिछले सिटिंग में ये लेसन लिया था, 25वां लेसन, कि कैकेयी जब ये वाक्य कही भरत को, अपने पुत्र को, तो वाल्मीकि मुनि इसका वर्णन देते हैं कि जिस प्रकार से एक विशाल साल वृक्ष, जो कि बहुत विशाल होते हैं, अचानक यकायक बिना किसी हवा के, बिना किसी तूफान के, यदि कोई देखे कि एक विशाल साल वृक्ष वो धराशाही गिर गया है, अपने जड़ों से उखड़कर गिर गया, तो उस प्रकार से भरत ये सुनते ही केवल इतना ही नहीं कि उनके पिता, उनका निधन हो गया है, बल्कि जिस तरीके से उनकी मां इस समाचार को सुना रही है, और इस दशा में, भरत की इस दशा को देखकर भी कैकेयी का हृदय जो है वो पिघलता नहीं, तनिक मात्र भी संवेदना नहीं होती कैकेयी को, और वो फिलॉसफी सुनाना प्रारंभ करती है। वो कहती है कि अरे जो गुजर गए हैं, जो कि नश्वर है, ये शरीर जिनका सबका नश्वर है, ऐसे नश्वर शरीर और ऐसे अटल सत्य को तुम क्यों स्वीकार नहीं कर रहे, क्यों विलाप कर रहे हो। भरत और अधिक जब सुन रहे हैं, कैकेयी को लग रहा है कि वो बहुत मैच्योर्ड लैंग्वेज बोल रही है, कैकेयी को लग रहा है कि वो सांत्वना दे रही है अपने पुत्र भरत को, और जब भरत के आंसू देखती है तो कैकेयी कहती है कि ये आंसू जो तुम बहा रहे हो, क्या वो योग्य व्यक्ति है जिनके लिए तुम ये आंसू बहा रहे हो, क्या वो योग्य थे। तो अब हमने ये शिक्षा ली कि यदि हम केवल फिलॉसफी को लें, कैरेक्टर्स को अलग कर दें, किसके विषय में कौन किसे कह रहा है, उन कैरेक्टर्स को अलग कर दें, केवल जो वर्ड्स हैं, फिलोसॉफिकल वर्ड्स हैं, उनको लें, तो सही बोल रही थी। भगवद गीता का सेकंड चैप्टर, बेसिक फिलॉसफी, जो नश्वर है उसके विषय में क्यों विलाप कर, शरीर तो एक ना एक दिन खत्म होने ही वाला है। तो लेसन यहां पर क्या है, स्पीकिंग राइट फिलॉसफी बट एट द रॉन्ग टाइम, Absolutely wrong time। जब परम पूज्य महाविष्णु महाराज उनका निधन हुआ था और यहीं पर ऑल्टर पर उनके शरीर को लाया गया था। हम सब यहाँ पर थे, राधानाथ महाराज आए थे, गोपाल कृष्ण महाराज, भक्ति चारू महाराज सब आए थे। तो मुझे याद है कि उस समय तैयारियां यहाँ पर हम लोग सब किए थे, पर्सनली राधानाथ महाराज वो ओवरसी कर रहे थे यहाँ पर पूजा विधि इत्यादि की सारी तैयारियां, और अभी तक उनकी बॉडी नहीं आई थी। तो कोई डिवोटी कीर्तन कर रहे थे तो महाराज ने मुझे कहा, ये जो मेलेडी गा रहे हैं दिस इज नॉट सूटिंग द ओकेजन, हुएवर इज सिंगिंग स्टॉप दैट डिवोटी। महामंत्री गा रहे थे वो। लेकिन पूरा ओकेजन क्या था, एक महान हस्ती जिनके विरह का उत्सव मना रहे थे। तो यहां पर भी क्या समझ में आ रहा है, राइट ट्यून बट रॉन्ग ओकेजन। जैसे यहां पर राइट फिलॉसफी, जैसे बहुत बार हम लोग फिलॉसफी भी जब कोट करते हैं तो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस देखना चाहिए कि क्या ये फिलोसॉफिकल पॉइंट इस समय इस व्यक्ति के लिए ये इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा, या कई बार उसका दूसरा आफ्टर इफेक्ट होता है। एक बार प्रभुपाद के डिसाइपल्स प्रभुपाद के पास आए और बोले कि प्रभुपाद, हम जब भागवत को प्रस्तुत करते हैं तो बहुत लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। प्रभुपाद ने पूछा क्या हुआ, क्या बोला? तो भक्त ने कहा, हमने जब प्रस्तुत किया कि द्वारका में उग्रसेन महाराज का ऐसा पैलेस था, इतने कक्ष थे, इतने कमरे थे, तो वो लोग मजाक उड़ाते हैं कि क्या तुम लोग मनगढ़ंत बातें बोलते हो कि इतने सारे कक्ष, इतना बड़ा महल, ये सारी चीज। तो प्रभुपाद ने कहा, आउट ऑफ 18,000 श्लोकस इन भागवतम यू फाउंड ओनली दो श्लोकस टू प्रेजेंट टू देम, और कुछ मिला नहीं तुम्हें भागवत में इसके अलावा और कुछ प्रस्तुत करने के लिए। तो थॉटलेस वर्ड्स कैन कॉज क्योरलेस वूंड्स, इसलिए हम कहते हैं ओपन योर माइंड बिफोर यू ओपन योर माउथ, ओपन योर माइंड बिफोर यू ओपन योर माउथ, एंड इफ यू कांट ओपन योर माइंड प्लीज डोंट ओपन योर माउथ। तो वही फिलॉसफी, हमने उदाहरण दिया था कि ऑपरेशन, कि ऑपरेशन विदाउट एनेस्थेसिया और एनेस्थेसिया विथ नो ऑपरेशन। तो कई बार ऑपरेशन मतलब काट छांट होने वाली है, लेकिन उस ऑपरेशन के पहले जो डॉक्टर सर्जन वो लोग एनेस्थेसिस्ट, एक अलग पूरा मेडिकल फील्ड है, वो लोग वही करते हैं, केवल एनेस्थेसिया देते हैं, सर्जन ऑपरेशन करते हैं। तो इमेजिन करो कोई ऑपरेशन बिना एनेस्थेसिया के, क्या हाल होगा? ओपन हार्ट सर्जरी बिना एनेस्थेसिया के, एक छोटा सा रूट कनाल ट्रीटमेंट मैं कराने गया था, वहां पर भी उन्होंने इंजेक्शन देके पूरा उसको सुन्न किया, फिर जाकर वो क्या क्या औजार डाल रहे हैं अंदर, वो आंखों में जब दिख रहा है कि वो ड्रिलिंग मशीन पूरा अंदर डाल रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, जैसे कि बोरवेल होता है बोरवेल वैसे पूरा ड्रिल कर रहे हैं, वो देख के डर लग रहा है, लेकिन कुछ वो एनेस्थेसिया दिया हुआ है तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और आप लोग ने कभी अगर अनुभव किया है वो रूट कनाल ट्रीटमेंट, उसके बाद फिर कितने घंटों तक वो ये पूरा एरिया ऐसा सुन रहता है, ऐसे लगता है कि ये भाग है ही नहीं, यहाँ से आप कुछ भी नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, कुछ खा नहीं पी नहीं सकते। तो इमेजिन करो बिना एनेस्थेसिया के। तो कई बार हमारा प्रीचिंग कैसे होता है, डायरेक्ट ऑपरेशन। क्या कि तुरंत उसको ठीक करना है, अरे पहले उसको थोड़ा मरम पट्टी लगाओ, बेचारा दुखियारा आ रहा है भौतिक संसार का, थका मांदा आया हुआ है। और कई बार क्या होता है कि इनिशियली हम बहुत एनेस्थेसिया लगाते हैं, ऑपरेशन ही नहीं करते। ये अलग कैटेगरी के हैं। तो मैं कहता हूं इनिशियली वी ऑफर पीपल फ्राइड पकोड़ास एंड देन वी फ्राई देम लाइक पकोड़ास। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इनसेंसिटिविटी और बीइंग डीसेंसिटाइज्ड, इन दोनों में अंतर क्या है। संवेदनशीलता ये या सेंसिटिविटी ये सटल है, बहुत सूक्ष्म है, परंतु बीइंग डीसेंसिटाइज्ड ये बायोलॉजिकल लेवल पर है कि किसी के सेंसेस जो हैं उनको वो पूरे सुन्न हो गए हैं, जैसे कि हमने एनेस्थेसिया का एग्जाम्पल दिया। तो जब बायोलॉजिकल लेवल पर कोई व्यक्ति को कुछ बातें समझ में नहीं आती या उस व्यक्ति को उसका भान नहीं होता, सो समवन हु इज डीसेंसिटाइज्ड डजंट मीन ही इज इनसेंसिटिव। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। बहुत बार ऐसा होता है, इंग्लिश में एक टर्म है, कई लोग हैं जिनको म्यूजिक सेंस होता है, कई लोगों को म्यूजिक सेंस बहुत रिफाइंड होता है, कई लोगों को मॉडरेट म्यूजिक सेंस होता है कि हाँ थोड़ा बहुत सुर ताल समझ में आता है और सुर ताल के साथ वो अपना गा लेते हैं कीर्तन, अगर लीड सिंगिंग कर रहे हैं तो। कई होते हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं टोन डेफ, TONE, टोन डेफ। टोन डेफ मतलब उन्हें बिल्कुल सुरताल का कोई भान नहीं होता। दैट डजंट मीन दे आर इनसेंसिटिव, दे आर डीसेंसिटाइज्ड। इसलिए कई बार कीर्तन में आपने भी अनुभव किया होगा कि कई उनको अगर सुरताल का वो तालमेल नहीं है तो वो अपने धुन में करताल बजाते हैं और उनका ऐसा बीट होता है कि जो पहुंचे हुए संगीत विशारद उसको इमिटेट भी नहीं कर सकते। वो एक ताल नहीं, दो ताल नहीं, तीन ताल नहीं, वो एक दुनिया के बाहर की ताल है। अनुभव किया है? और वो आंख बंद करके बजा रहे हैं। जितने सारे डिवोटीज कीर्तन में हैं वो लोग सब परेशान हैं इसके अलावा। और कई बार हमने देखा है कि मंगल आरती, तुलसी आरती, नरसिंह आरती, स्पेशली मंगल आरती में सब कुछ शांत रहता है, अभी अभी नींद से उठ के आए हैं, ज्यादा ही शांत रहते हैं और ट्यून भी एकदम बहुत ही सॉफ्ट ट्यून होती है। उसमें अगर मंगल आरती में किसी ने इधर उधर थोड़ा सा सुरताल इधर हो गया उसका या कोई लाइन भूल गया, तो कई बार कई जो बहुत सेंसिटिव हैं वो टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, फिर वो डर जाता है कि ये मंगल आरती चल रही है कि दंगल आरती चल रही है। अब यहां तक ठीक है, करताल का इधर उधर होना वहां तक ठीक है, परंतु जब हम किसी के साथ रह रहे हैं, जैसे ब्रह्मचारी से ब्रह्मचारी आश्रम में, गृहस्थ जब अपने परिवारों में, रिश्तों में, वहां पर ये डेडली कॉम्बिनेशंस क्या है, एक व्यक्ति सुपर सेंसिटिव है, दूसरा व्यक्ति पूरा डिसेंसिटाइज्ड है, ये दो एक साथ एक छत के नीचे, वो छत भी परेशान हो जाती है कि मैं गिरूं या रहूं। तो हम कुछ ऐसे डेडलीस्ट कॉम्बिनेशंस लेंगे कि जिसके अंदर, ये बहुत जरूरी है ये आज का डिस्कशन, स्पेशली यदि हम बहुत एक्स्ट्रा सुपर सेंसिटिव हैं या परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ पर्सन है और हमें निभाना है किसी के साथ जो कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, तो कैसे दोनों को इसका भान हो थोड़ा थोड़ा, और ताकि दोनों अपने अपने तरफ से कदम उठाएं उस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए। शुरू करें, थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। तो देखो, ये एक जो कॉम्बिनेशन है, कई लोग जिनको इंग्लिश में भी बोलते हैं एब्सेंट माइंडेड, फॉरगेटफुल, मतलब नेचुरली वो चीजें भूल जाते हैं, स्पॉन्टेनियसली चीजें भूल जाते हैं, उन्होंने कोई प्लान नहीं करते किस चीज को भूलने का, और वो किसी को चिढ़ाने के लिए भी नहीं कि मैं जानबूझ के उसको भूलूंगा ताकि ये चिढ़ता है उससे, ये वो चिढ़ती है उससे, इसलिए मैं भूलूंगा जानबूझ, नहीं, उनका एक बहुत नेचुरल क्वालिटी है भूल जाना। अब जो इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति उसके साथ है किसी आश्रम में जो कि बहुत थॉटफुल है, हर चीज एकदम सोचकर ध्यान पूर्वक याद रखकर करता है, और इन दोनों एक ही सेवा में, ये लोग एक ही प्रोजेक्ट में, तो ये तो उदासीन फॉरगेटफुल वहां तक ठीक है, बट दोज हु आर फॉरगेटफुल एंड वी आर कूल अबाउट इट, दैट इज द डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन, दे डोंट इवन रियलाइज दैट दे आर फॉरगेटफुल। तो आपने पूछा कि आप वहां पर मुझे मिलने वाले थे, आप ये बोलने वाले थे या देने वाले थे, क्या हुआ? हो अच्छा, अरे मैं भूल गया प्रभु। आप भूल गए? हाँ भूल गया प्रभु। क्या करें प्रभु, कलयुग की बुद्धि है हा? और श्लोक भी बोल देते हैं, प्राण अल्प आयुष सभ्य, बाकी सारी चीज भूल गए, श्लोक याद है। मुझे याद है जब मैं राधानाथ महाराज की सेवा में था, तो बहुत से महाराज के गेस्ट आते थे, तो एक गेस्ट आए थे, तो अब उस समय हमारा गेस्ट रिसेप्शन डिपार्टमेंट नहीं था, आज अभी तो वहां पर गेस्ट रूम्स है, गेस्ट रिसेप्शन डिपार्टमेंट अलग है। तो उस समय नियम ऐसा था कि जो राधानाथ महाराज का सर्वेंट होगा वो राधानाथ महाराज के गेस्ट की सेवा भी करेगा। तो ये गेस्ट आए, तो महाराज ने मुझे कहा कि उनको जाकर पूछो डिनर में वो कुछ लिए कि नहीं, क्या लेंगे वो डिनर में, जाके उनको पूछो। तो मैं पहली दफा, मुझे नहीं पता था इनके विषय में, तो मैं गया उनसे पूछने के लिए, मैंने पूछा कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर डिनर। तो अभी शाम का समय, 6:30-7 बजे का समय, तो उस समय मुझे महाराज ने भेजा था, मैं गया तो पूछा, तो वो पहले बोले डिनर समथिंग लाइट। तो फिर मैंने ऑप्शंस रखे, महाराज पोहा, व्हाट इज पोहा, तो मैं एक्सप्लेन किया इंग्लिश वर्जन उसका, बताया क्या होता है, नो खिचड़ी नो। तभी मैं भी सोचा लाइट और क्या हो सकता है, खिचड़ी पोहा। मैंने पूछा महाराज कुरमुरा पफ, मैं और भी लाइट जाते हैं थोड़ा। तो बोले सबको सबको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, खिचड़ी पोहा कुरमुरा सब रिजेक्ट हो गया। तो फिर मैं पूछा, मतलब मैं फाइनली मेरा एक्सप्रेशन ये था कि मतलब कुछ लाऊं कि नहीं लाऊं। तो उन्होंने बोला आई हैव सम इडलीस। मैं बोला अभी इडली के लिए एक दिन पहले आटा लगाना पड़ता है, और ये उस समय का, अभी अभी तो आजकल बैटर मिल जाता है रेडीमेड, ये 15-16-17 साल पहले की बात है, जब ये सब कुछ मिलता भी नहीं था मार्केट। तो मैं एक्सप्लेन करने गया क्योंकि अमेरिका के, तो मैं उनको बोला कि उसका बैटर एक दिन पहले लगाना पड़ता है, उसका जो आटा है, नहीं नहीं इडली इज आर गुड। अब मैंने उनको क्या बताया और सामने से रिस्पांस क्या आया, तो अभी एक मुझे डर था कि महाराज राधानाथ महाराज ने मुझे भेजा है, उनके गेस्ट हैं, तो अभी इडली कहाँ से लाएं। तो साउथ इंडियन डिवोटीज जो भी थे उनके घर पे फोन किया कि भाई कोई बचा हुआ आटा है इडली का, शाम के 6:30-7 बजे। तो आसपास तो कोई साउथ इंडियन डिवोटीज थे नहीं, कोई थाने के, कोई कल्याण के, वहाँ के डिवोटीज। बोले प्रभु जी जब तक हम आएंगे तब तक ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाएगा सुबह। तो याद आया मुझे, हमारे एक डिवोटी हैं, उनका रेस्टोरेंट, जैसे अपना यहाँ पे नील माधव प्रभु का रेस्टोरेंट है, वैसे अभी तो गोविंदास अपना आ गया, पहले गोविंदास वगैरह कुछ नहीं था। तो हमारे एक डिवोटी है मदन मोहन प्रभु, उनका हिंद माता करके बॉम्बे सेंट्रल पर रेस्टोरेंट, तो सारे डिवोटीज वहां पर बहुत बार जाया करते थे। कई संडे फीस्ट वहां पर डिवोटीज मनाते थे। तो मुझे याद आया कि हाँ ये डिवोटी एक तो साउथ इंडियन है और इनका रेस्टोरेंट है, तो वहां पर तो बैटर होगा ही, डेफिनेटली होगा। तो मैं गया, तो वहां पर वो उनका डिनर टाइम था, तो डिनर में वो लोग इडली वगैरह सर्व नहीं करते, वो सब ब्रेकफास्ट आइटम्स, उनके टिफिन आइटम्स बोलते हैं, वो सुबह सर्व करते। मैंने कहा लेकिन आपके पास आटा तो होगा। हाँ आटा है लेकिन अभी उसको बनाएंगे कैसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम रुको, आधा घंटा लगेगा। तो आधा घंटा पौन घंटा उसके बाद फिर उन्होंने बनाई इडली, इडली चटनी पैक करके मैं आया, एकदम कि फाइनली जैसे हनुमान जी ने सीता का संदेश लेकर आए वैसे मैं आ गया। हाँ नामुमकिन को मुमकिन करते हुए आया। तो मैं आया महाराज पाइपिंग हॉट इडलीस। बोले व्हाट। बोला महाराज इडलीस। ओ इडलीस, आई एम नॉट हंग्री एनी मोर, मैं इडली की ओर देख रहा हूं, मैं अपनी ओर देख रहा हूं, हु एम आई, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि सम पीपल दे आर फॉरगेटफुल एंड दे आर फॉरगेटफुल अबाउट बीइंग फॉरगेटफुल, वेरी कूल अबाउट इट। सो दोज हु आर सुपर सेंसिटिव शुड नो दैट दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो देयर इन सम पीपल, सो डोंट गेट वर्कड अप। सेकेंड, लेट लतीफ है and they are totally unapologetic कि वो late पहुंचे हैं और उनको तनिक मात्र भी रंज नहीं है उसका, एकदम बेफिक्र। और कई बार तो आते हैं, लेट आते हैं और सीना ठोक के कि आया तो। जैसे मैं बार गोवा गया था तो जो हमारी फ्लाइट बुक थी स्पाइस जेट की, तो वो दोपहर की थी, कुछ 3 बजे की ऐसे, तो 1 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच गए हम लोग, क्योंकि कोई चेक इन बैग नहीं था, डायरेक्टली बोर्डिंग पास लेकर हमको फ्लाइट बोर्ड करनी थी। तो काउंटर पर, वो स्पाइस जेट के काउंटर पर वो लेडी ने कहा कि गेट क्लोज हो गया। हमने कहा अभी तो ऊपर दिखा रहा है बोर्डिंग, गेट क्लोज कैसे हो सकता है, 1 घंटे बाद फ्लाइट है। बोले कि नहीं, आपको मैसेज नहीं मिला, प्रीपोन हो गई फ्लाइट। ना हमको कोई मैसेज नहीं मिला, नहीं नहीं हमने तो सारे पैसेंजर्स को मैसेज भेजवा दिया था, SMS सबको। मैंने कहा ठीक है, आपके सिस्टम में आप मुझे बताइए कि मेरे नंबर पर आपने SMS भेजा क्या, क्योंकि मैं तो झूठ बोल सकता हूं ना, मैं तो डिलीट कर सकता हूं कि आपने भेजा नहीं, आपके सिस्टम में होगा ना कि आपने भेजा है मेरे नंबर पर, दिखाइए मुझे। तो उसने देखा, नहीं भेजा था, तभी गलती उनकी थी। तो फिर कैसे तो अरेंज कर फाइनली गेट खुलवाया और फिर हमको एंट्री दी। तो बहुत अजीब ये एक्सपीरियंस, बहुत कम बार होता है ऐसा। तो रिटर्न मेरी जेट एयरवेज की थी वहीं से, गोवा से, और सुबह 4:30 की फ्लाइट थी। तो आपको 1 घंटे पहले, वो भी फ्लाइट अगर 4:30 की है तो आपको 3:30 बजे पहुंचना है, और जहां पर हम रुके थे जिस सेंटर पर, वहां से आधा घंटा ड्राइव, तो मतलब आपको 3 बजे निकलना है। 3 बजे निकलने के लिए आपको कम से कम 2:30 बजे उठना है। तो मैंने एक रात पहले ही पूछ लिया, मुझे कौन ड्रॉप कर रहा है। बोले हाँ प्रभु जी सब अरेंज्ड है। नहीं नहीं वो डिवोटी कौन है वो मुझे बताओ। तो वो डिवोटी को लेके आए, तो मैंने कहा आप मुझे ड्राइव करने वाले, गाड़ी कौन सी है, इधर ही है ना गाड़ी, हाँ इधर ही है गाड़ी, आपको आता है ड्राइव करने, आता है, चाबी आपके पास है, हाँ चाबी, गाड़ी में पेट्रोल है, सब कुछ पूरा। फिर मैंने उनको टाइम दिया कि हम शार्प 2:45 को निकलेंगे, 3 बजे नहीं 2:45 निकलेंगे, आप रेडी रहना, ठीक है। तो मैं 2:30 बजे रेडी था, तो मेरे साथ जो असिस्टेंट थे, मैंने उनको बोला जाके पता करो ये डिवोटी जिस कमरे में सो रहे हैं ये उठे कि नहीं। तो जाके पता किए, अंदर से कमरा बंद है, वो टक टक कर रहे हैं, फोन स्विच ऑफ। पौने 3 हो गए, 2:50, 2:55। तो फिर वहां पर जो डिवोटी का कमरा खुला था, मैंने उनको उठाया, मैंने बोला आप ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी की दूसरी चाबी है आप लोगों के पास। बोला हाँ हाँ प्रभु इसके है दूसरी। बोला लाइए चाबी, लाइए। तो चाबी ली, मैंने कहा आप भी आइए हमारे साथ। बोला आपको ड्राइविंग आती? बोला नहीं। तो आप ठीक है, आप पीछे बैठिए, हम लोग एयरपोर्ट चलते हैं, ये चाबी और गाड़ी आप एयरपोर्ट में बैठे रहिए, उनको फोन करना जब उड़ जाएंगे उनको बुला लो। और वहां पर हम पहुंचे, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक तो इतना फास्ट ड्राइव किया वहां पर मैंने गोवा में, और वो डिवोटी शॉक थे कि कल इनका लेक्चर सुना था, एकदम काम कंपोज लेक्चर दे रहे थे ये, अभी ये 100-120 की स्पीड पे जा रहे हैं, खाली वो टेक ऑफ लेना बाकी था। उनको लग रहा था कि इसी को टेक ऑफ लेके बंबई जाएंगे क्या। तो वहां पहुंचने के बाद जेट एयरवेज, जो कि इतनी मानी हुई एयरलाइंस है, जेट एयरवेज, वहां पहुंचने के बाद वो बोलते हैं आप अगर 1 मिनट लेट आते गेट क्लोज हो जाता, फ्लाइट प्रीपोन हो गई। मैंने कहा फ्लाइट प्रीपोन हो गई, आप लोग मैसेज क्यों नहीं करते, हमने तो किया था। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि अनअपोलोजेटिक एंड लेट कमर, कई लोग वो क्लीनलीनेस फ्रीक होते हैं, उनको हर चीज टू द मार्क, उसमें एक डस्ट पार्टिकल भी नहीं होना चाहिए, ऐसे उस लेवल की साफ सफाई रखने वाले। हाँ, और कई बार हमने देखा है कि घरों के अंदर, जैसे मैंने मेरी मदर में देखा है कि मेरी मदर बहुत, उनका हाई लेवल है क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड, और इंडिया के अंदर जो काम करने वाली बाइयाँ होती हैं वो लोग, उनका घर थोड़ी है और अपने हिसाब से वो लोग साफ सफाई रखते हैं। तो बहुत से बाइयों की सफाई कर दी हमारी माँ ने, वो स्टैंडर्ड में मैच नहीं हुआ इनकी। इसलिए जैसे मुझे याद है, अभी हम लोग इंडिया में, हम लोग को लगता है कि, जैसे हम लोग को लगता है नासिक मंदिर कितना साफ सुथरा रहता है हमारा, है ना। बहुत बार बाहर के लोग आके बोलते हैं तो आपका मंदिर बहुत साफ है, क्योंकि वो बाकी मंदिरों में जाके आए हैं तो उनके तुलना में हमारा रिलेटिवली साफ लगता है। तो मैं गिरिराज महाराज के सर्वेंट के साथ जुहू इस्कॉन में एक दो दिन रह रहा था। गिरिराज महाराज आने वाले थे बहुत सालों बाद, तो जस्ट उनके साथ असिस्ट करने के लिए कि गिरिराज महाराज की सेवा करने मिलेगी, लेजेंड हैं इस्कॉन के। तो उनके सर्वेंट के साथ, उनका नाम था रसिकानंद प्रभु, तो वो गिरिराज महाराज के कमरे की सफाई कर रहे थे, और वो, उनके पास बड़ा मॉप था, अलग अलग साइज के मॉप्स थे, अलग अलग सोफा सेट, चेयर, टेबल, हैंडल्स, हर एक चीज को साफ करने के छोटे छोटे ब्रश, मतलब इतना माइन्यूटली साफ करते हैं आप। प्रभु जी आप जानते नहीं गिरिराज महाराज का स्टैंडर्ड क्या है क्लीनलीनेस का। तो वो डोर नॉब्स को ब्रश से एक एक उसका निकाल रहे हैं, धूल उसमें से निकाल रहे हैं। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैं बोला इसमें तो उनको पूरा दिन 12 घंटा लगा, छोटा सा कमरा था, 12 घंटा एक भी डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए। तो मैं और ज्यादा इंप्रेस हो गया कि गिरिराज महाराज का सर्वेंट इतना मेटिकुलस है साफ सफाई में, तो गिरिराज महाराज क्या होंगे। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, गिरिराज महाराज आए एयरपोर्ट से, बड़ा वेलकम, गार्लैंड्स वगैरह, कीर्तन, सब कुछ। हम लोग दोनों वेट कर रहे हैं, गिरिराज महाराज आते हैं कमरे में, आप विश्वास नहीं करेंगे, हार्ट बीट स्किप हो गया मेरा उनका क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड देखकर। अभी वो इतने सालों बाद बॉम्बे आ रहे हैं, दरवाजा खोला, उन्होंने कहाँ चेक किया होगा, पूरा कमरा, मतलब हमारे दृष्टिकोण से, अमेरिका के दृष्टिकोण से, जो वेस्ट में मैं जाके आया हूँ, कि उस दृष्टिकोण से एकदम स्पिक एंड स्पैन। गिरिराज महाराज ने दरवाजा खोला, दरवाजे के ऊपर उंगली भी लगाई, कुर्सी पे चढ़े, दरवाजा बड़ा था, कुर्सी पे चढ़े, अंदर गए ही नहीं कमरे में, कुर्सी पे चढ़े, दरवाजे के ऊपर उंगली घुसा, वो जो आप समझते हैं ना चौखट पे जो लगता है दरवाजा, वहां पर, और पूरा इतना काला काला, और वो अपने सर्वेंट को दिखा रहे हैं। सो दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस। मैं बोला महाराज मैं निकलता हूं। तो कई बार क्या होता है कि कई जो बहुत इसमें परफेक्शनिस्ट है क्लीनलीनेस में, और कई जो हैं उनको समझ में ही नहीं आता है, अच्छा गंदा भी है क्या। और उनको जब बताया जाता है कि भाई ये चीज तुमने इतनी गंदगी गंद मचा रखी, तो वो देखते हैं और उनका एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। अभी देखो कितना वो घूमती रहती हो, आली 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 आली। हमारे डिवोटीज वो महामंत्र से ज्यादा इसका कीर्तन दिन भर करते रहते। मैं अपने कमरे में कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ, पावर पॉइंट बना रहा हूँ, लेक्चर की तैयारी कर रहा हूँ, आली आली।
आली आली घंटा गाड़ी, ओला कचरा सूखा कचरा, और क्या रोग राय थी चिंता विसरा। देखो कितना याद हो गया, पता चला नेक्स्ट टाइम भागवतम से पहले करताल लिया, राधा माधव गाने से पहले हाली आ। तो क्यों ये इतना बजा बजा के घूम रहे हैं, बहुत इनोवेटिव तरीके से। अभी किसी को लगेगा कि प्रभात फेरी जा रही है सुबह सुबह, मतलब लोग अपना कचरा दीजिए, साफ रखिए, स्वच्छ भारत इत्यादि। तो ये एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन, अनक्लीन एंड अनअवेयर टोटली। शार्प टंग्ड येट टॉकेटिव, कम से कम अगर मुंह कम खोले तो ठीक है, पर जिसको बोलते हैं मुंह फट और बातूनी, उसके साथ साथ बातूनी भी, इसलिए बोलते हैं wounds which are on the tongue they heal fastest। जब कोई घाव जीभ के ऊपर जिह्वा के ऊपर होता है तो सबसे जल्द वो घाव भर जाता है, क्योंकि बहुत एंटीसेप्टिक जो सलाइवा अपना है उसमें बहुत एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है। wounds on the tongue heal the fastest, wounds given by the tongue they heal the slowest and sometimes they don't even heal। और कई बार यदि कोई इस कॉम्बिनेशन का है कि उसे समझ में नहीं आता है कि उसके कर्कश वाणी की वजह से किसी अगले व्यक्ति पर क्या असर हो रहा है, जैसे ये मुझे किस्सा याद आ रहा है, इसमें कर्कश वाणी तो नहीं थी परंतु उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। तो गोविंद प्रभु के साथ मैं गया था अलीबाग, वहां पे हमारे आदिकेश्वर प्रभु का काउंसलिंग ग्रुप, हम लोग अलीबाग गए थे। तो उधर पूरे सेशन के बाद फिर प्रसाद सर्विंग, जैसे हम लोग मंथन करते हैं प्रोग्राम, वैसे वो मंथन टाइप प्रोग्राम था अलीबाग में किसी रिसोर्ट में। तो हमारे सब डिवोटीज प्रसाद वगैरह बना कर ले गए थे, तो एक डिवोटी वो बटाटा वड़ा सर्व कर रहे थे, तो बहुत ऐसे एंथुजियास्टिकली और भाग भाग के बाल्टी में बटाटा वाड़ा लिए, भाग भाग के सर्व को सर्व करो। तो मैं और गोविंद प्रभु सबसे पहले लाइन में बैठे थे, तो सबसे पहले सर्विंग हो गई थी, अब वो सेकंड सर्विंग के लिए आए, तो तुरंत मेरे सामने आए, प्रभु जी एक दू क्या। तो मेरा चेहरा प्लेट में था, जैसे उसने प्रभु जी एक दू क्या। तो बाद में जब बाल्टी में बटाटा वाड़ा देखा तो समझ में आया कि क्या देना चाह रही है। तो मैंने कहा ठीक है दे दीजिए, दे दिया। और वो सबसे सबको लाइन प्रभु जी दू क्या सबको ये बोल रहे, और सब लोग देख रहे हैं हाँ दे दीजिए प्रभु। फिर से आए तो मैंने फिर उनको बोला कि प्रभु जी आप ऐसे मत पूछिए, बोला क्यों कुछ गड़बड़ है, नहीं बटाटा वड़ा ही है ना, बोला नहीं नहीं वो तो ठीक है लेकिन आप जो पूछ रहे हैं ना एक दूं क्या। ओ हाँ अरे सॉरी प्रभु जी सॉरी सॉरी, एक बटाटा वड़ा आप लेंगे क्या, बोला ये ठीक है। तो उनको कम से कम समझ में आया, परंतु कई बार जब समझ में नहीं आता तो वो एक अलग डेडली कॉम्बिनेशन है। और फाइनली जैसे क्लम्जी बोलते हैं, कई लोग थोड़े बेढंगे होते हैं, वो अगर मान लो कि जैसे पानी का ग्लास, एक बार क्या हुआ कि पानी का ग्लास राधानाथ महाराज ने मांगा क्लास के पहले, तो एक डिवोटी ने पूरा ऊपर तक भर कर लेकर, महाराज ने देखा, महाराज बोले इसको कैसे पी सकते हैं, व्यासासन के ऊपर पूरा ऊपर तक भर के लाया तो गिर रहा था यहां वहां, तो इसको बोलते हैं बींग क्लम्जी। और अगर कोई व्यक्ति उसके साथ साथ बहुत ओवर एंथुजियास्टिक है, वेरी क्लम्जी ऑल्सो एंड वेरी एंथुजियास्टिक टू एग्जिबिट क्लम्जीनेस। एक प्रोग्राम में हमें याद है साउथ बॉम्बे का एक बहुत आलिशान घर, वहां पर सारे कांग्रेगेशन डिवोटीज आए हुए हैं, राधानाथ महाराज का इवनिंग प्रोग्राम है और अच्छा साउंड सिस्टम, लाइटिंग अच्छी, एसी लिविंग रूम उनका, एयर कंडीशन लिविंग रूम, साउथ बॉम्बे का आलिशान घर। तो सारे अपने अच्छे डिवोटीज, सीनियर कांग्रीगेशन काउंसलर सब लोग आए हुए हैं, महाराज अपना राधा माधव गाए और ये नई फैमिली है। तो जैसे ही राधा माधव हो गया, अभी महाराज लेक्चर शुरू करने वाले हैं, तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। तो ये होस्ट आरती की प्लेट लेकर आए, अब सबके सामने महाराज बैठे हुए हैं, वो आरती की प्लेट से आरती कर रहे हैं, तो उसमें दिया, नारियल और फूल थे गेंदे के, कौन से गेंदे के फूल, क्या झेंडू बोलते हैं, झेंडू के फूल। तो महाराज बैठे हैं, आरती इनकी होगी एक मिनट की होगी, चले जाएंगे फिर लेक्चर शुरू करें। तो पूरी वो आरती अच्छी से किए, टीका लगाए, लाल वाला लंबा इधर तक टीका लगाए, फिर वो अक्षत वो पूरा इधर ऊपर, फिर सबसे ऐसी चीज करी कि हमने कहीं देखी नहीं ऐसी चीज, फिर वो गेंदे का फूल लिया और महाराज के यहां सर पे रख के वो चला गया, वो चला गया। अब इमेजिन करिए कि ये सारे बड़े बड़े काउंसलर्स, मैंने आपको बताया ना एटमॉस्फेयर एम्बियंस क्या था, वो एसी बड़ा लिविंग रूम और वो यहां पे, और मैं बैठा था, मैंने देखा महाराज उसको बैलेंस कर रहे हैं। मैं वही सोच रहा था ये गिर कैसे नहीं रहा है। फिर अपने शॉल से महाराज ने हाथ निकाला, उसको नीचे रखा। एक हमारे वहां पर ब्रह्मचारी थे राधा गोपीनाथ में, तो भक्ति चारू महाराज आए थे क्लास देने के लिए, तो इनिशियल उस समय इतने सन्यासी जाते नहीं थे, तो भक्ति चारू महाराज फिर से एक लेजेंड है हमारे इस्कॉन के, और महाराज राधानाथ महाराज के इतने क्लोज हैं, तो आए तो बहुत सारे कांग्रेगेशन डिवोटी, संडे मॉर्निंग क्लास, तो राधानाथ महाराज भी बैठे थे। तो जनरली जैसे ऐसे इसी प्रकार का सेटअप है, तो डीटी रूम से महाराज उस तरफ से आके ऐसे बैठ जाते थे सामने। तो हुआ क्या कि एक ब्रह्मचारी लेक्चर के बीच में, उस ब्रह्मचारी को महाराज ने इशारे से बुलाया, बहुत अनयूजुअल है महाराज क्लास के बीच में किसी ब्रह्मचारी को इशारे से बुला रहे। तो गए वो ब्रह्मचारी, महाराज ने उनके कान में कुछ करने के लिए कहा। अब हुआ क्या कि ये ब्रह्मचारी को इंग्लिश इतनी अच्छी से आती नहीं थी, और वो भी महाराज, और महाराज बहुत सॉफ्टली, क्योंकि क्लास चल रही है, वैसे भी महाराज बहुत सॉफ्टली बोलते हैं, क्लास के बीच में तो और सॉफ्टली बोल रहे थे, तो कुछ तो इस कान में बोला ऐसे। ये भी ऐड करना चाहिए ना कि सेलफोन बजता है और कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता खैर इधर पता चल गया। तो महाराज ने उनके कान में कुछ बोला, वो जाकर पीछे खड़े हो गए। तो एक मिनट हुआ, दो मिनट हुआ, महाराज पीछे मुड़ के देखे, तो इनको क्या लगा कि ये शायद सो रहे थे, इसलिए महाराज ने कान में बोला है गो स्टैंड बिहाइंड, तो खड़े हो गए। तो महाराज ने वापस बुलाया, वापस महाराज ने कान में कुछ बोला, तो और कंफ्यूज हो गए कि शायद पहला वाला वो इंस्ट्रक्शन नहीं था, जो पहले मुझे समझ में आया, तो दूसरी बार भी समझ में नहीं आया उन्हें। तो उन्होंने एक ऐसी चीज करी कि हम लोग भी उधर आश्चर्यचकित हो गए। वो डीटी रूम में गए, चामर लेके आए। इमेजिन करो, संडे मॉर्निंग क्लास, पूरा हॉल भरा हुआ है, वो डीटी रूम में जा रहा है, चामर लेके आ रहे हैं। महाराज देख रहे हैं क्या कर रहा है, सब लोग, हम लोग देख रहे हैं, वो चामर लेके आ रहे हैं, दूसरे डोर से चामर लेके आए और भक्ति चारू महाराज को चामल करने लगे। भक्ति चारू महाराज देख रहे हैं मेरी कोई व्यास पूजा नहीं है आज। तो वो लेक्चर के बीच में वो बार बार देख रहे हैं, राधानाथ महाराज को देख रहे हैं। राधानाथ अभी सबने देखा कि राधानाथ महाराज ने इनको दो बार बुलाया, कान में कुछ बोला है, तो सबको क्या लगा कि शायद राधानाथ महाराज चाहते हैं और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, कि शायद राधानाथ महाराज ने बोला होगा इनको कि चामर करो, इनको पहली बार आए हैं मंदिर में, चामर करना चाहिए, इतने बड़े सीनियर प्रभुपाद डिसाइपल हैं। तो फिर महाराज ने मुझे बुलाया, बोला कि उसको बोलो तुम वो डीटी रूम में लेके जाए वापस वो चामर को। तो मैं बोला महाराज व्हाट यू वांटेड हिम टू डू, बोला आई जस्ट टोल्ड हिम टू टेल देयर वर मेनी डिवोटीज देवर फेसिंग देयर बैक टू प्रभुपाद। मैं ये बोल रहा था कि वो लोग अपना पीठ किए हुए हैं प्रभुपाद, वो नहीं करें। तो इनको वो समझ में नहीं आया, तो वो पहले खड़े हो गए फिर चामर लेके। सो मेनी टाइम्स इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड, बेटर आस्क अगेन अगेन अगेन। और मैं जब उनकी सेवा में था तो एक कार्डिनल प्रिंसिपल था, अगर उन्होंने कुछ पूछा है और आपको नहीं पता बोल दो, महाराज आई डोंट नो। ये तो कई बार हम लोग आई विल फाइंड आउट, नहीं आई विल कम बैक, अभी बताता हूँ, और फिर हम लोग अपने टाइम से पता नहीं क्या पता लगा के बताते हैं। तो इसलिए ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, फॉरगेटफुल येट कूल, लेट अनअपोलोजेटिक, अनक्लीन अनअवेयर, शार्प टंग टॉकेटिव, क्लम्जी ओवर एंथुजियास्टिक, तो ये कॉम्बिनेशंस जब कोई सुपर सेंसिटिव है और सामने वाला बंदा अगर ये कॉम्बिनेशन के साथ है तो हर समय मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती बढ़ती। बट नो फॉर श्योर दैट दे माइट नॉट बी इनसेंसिटिव, दे माइट बी जस्ट डीसेंसिटाइज। जैसे कि वो जो करताल ठीक से नहीं बजा पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो एक टोन डेफ जिसको बोलते हैं। तो रामानुजाचार्य उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर अपने शिष्यों को बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल इंस्ट्रक्शंस दिए। वैष्णव अपराध या जजिंग अ वैष्णव बेस्ड ऑन ऑल दीज एक्सटर्नल्स, तो उन्होंने 12 टाइप्स ऑफ वैष्णव अपराध बताए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दस नहीं, कितने? 12 टाइप्स ऑफ वैष्णव अपराध। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहला वैष्णव अपराध रामानुजाचार्य के अनुसार उन्होंने कहा है जन्म निरूपण, जजिंग वैष्णवास बेस्ड ऑन देयर लो एंड हाई बर्थ, कि ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ वैष्णव है, ये इस परिवार में पैदा हुआ वैष्णव है, ये शूद्र परिवार में पैदा हुआ वैष्णव है, ये म्लेच्छ जो देश है वहां का ये वैष्णव है। तो रामानुजाचार्य के अनुसार यदि कोई इस प्रकार का डिफरेंशिएशन करता है, केवल वो डिफरेंशिएशन करता है उसमें वैष्णव अपराध शुरू हो गया उसका। जैसे भागवत में कहा गया है कि जब कोई ये मानता है कि मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ इसलिए मैं उच्च कुल का हूं होना चाहिए, जस्ट बिकॉज आई एम बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, तो बहुत सुंदर लॉजिक श्रीमद् भागवत में दिया हुआ है कि जब कोई पैदा होता है तो उसके साथ बहुत से कीटाणु भी निकलते हैं उसी उदर से जिस उदर से वो निकला है। शरीर में बहुत से कीटाणु होते हैं और वो एमनियोटिक फ्लूइड के साथ वो सारे कीटाणु जीव जंतु भी आते हैं। तो यदि कोई कहे कि मैं किसी ब्राह्मणी के उदर से निकला हूं इसलिए मैं ब्राह्मण हूं, तो वो कीड़ा भी ब्राह्मण हो गया, वो भी तो उसी उदर से निकला है, वो भी सहोदर हो गया ना। तो क्या उसको जनेऊ पहना के उसको ब्राह्मण बनाओगे, ब्राह्मण बोलोगे उसको? तो बेस्ड ऑन वंस हाई एंड लो बर्थ जजिंग समवन जस्ट बेस्ड ऑन दैट इज वैष्णव अपराध। सेकंड, शरीर निरूपण, जजिंग वैष्णवस बेस्ड ऑन देयर बॉडीली फीचर्स। एक बार हम लोग राधा गोपीनाथ मंदिर में इनिशिएशन का एक स्पेशल हमने इंटरव्यू और कोर्स और ये सब डिजाइन किया था भक्ति शास्त्री के साथ, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर सिलेबस में। तो उसके अंदर मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कैंडिडेट को मैं मिला, तो मैंने उनको पूछा कि आप क्यों दीक्षा लेना चाहते हैं, ये पर्टिकुलर एक्स वाई जेड गुरु से आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं, क्या रीजन है दीक्षा, आपकी इच्छा क्या है, क्या देखा आपने? बोले प्रभु जी स्मार्ट है एकदम, गुरु महाराज दिखने में एकदम स्मार्ट है। मैंने कहा मतलब? बोला जब उनका फोटो मैं ऑल्टर पे रखूंगा ना एकदम परफेक्ट लगेगा ऑल्टर। मैंने कहा ये रीजन है? हाँ प्रभु, मैंने बहुत से देखे सन्यासी लेकिन अपने गुरु महाराज स्मार्ट लगते हैं सबसे। तो देखो अगर ये यार्डस्टिक है किसी किसी को एडवांस्ड मानने का या पहचानने का कि उसके बॉडीली फीचर्स कैसे हैं, ये रामानुजाचार्य के अनुसार ये एक अपराध है जिसको उन्होंने नाम दिया है शरीर निरूपण। थर्ड है भाव निरूपण, जजिंग वैष्णवस बेस्ड ऑन देयर इमोशंस। अब हम देखते हैं कि भक्त जो हैं वो अलग अलग इमोशनल लेवल पर होते हैं। कई डिवोटीज जो होते हैं वो बहुत फिलोसॉफिकल होते हैं और ज्यादा ऐसे सेंटिमेंटल टाइप नहीं होते, स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। और कई होते हैं इमोशनली बहुत सॉफ्ट होते हैं। और कई बार एज अ प्रवक्ता हमने देखा है कि लेक्चर के समय कोई ऐसा पॉइंट, कई होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता हूं, चाहे आप कितना भी मार्मिक पॉइंट सुनाओ वो लोग इक्विपॉइज्ड रहते हैं। और कई बार कई जो श्रोता होते हैं वो उनको पॉइंट से बहुत अफेक्ट होते हैं और उनके इमोशंस उनके एक्सप्रेशंस में दिखते हैं। तो कई बार हमको दिखेगा कि कई डिवोटीज वो बहुत भावुक लगते हैं, कई डिवोटीज भावुक, कई डिवोटीज बारूद। सम डिवोटीज आर वेरी डायनामिक, सम डिवोटीज आर लाइक डायनामाइट। बट अगेन जस्ट बेस्ड ऑन देयर एक्सटर्नल इमोशंस, इफ समबडी जजेस दैट जस्ट बिकॉज ही एक्सप्रेसेस वेरी इमोशनली देयरफॉर ही इज वेरी एडवांस्ड, समबडी हु डजंट एक्सप्रेसेस ही इज नॉट एडवांस्ड एट ऑल और ही इज ज्ञानी काइंड ऑफ डिवोटी। कई बार हम बोल देते हैं कि ये कुछ ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ज्यादा ऐसा सेंटिमेंट्स अपने एक्सप्रेस नहीं करता, ये थोड़ा मायावादी टाइप है, ज्ञानी टाइप है, या कोई ज्यादा ही भावुक है तो उसका मतलब ये सहजिया टाइप है। ये दोनों एक्सट्रीम में चले जाते हैं, या तो किसी को मायावादी ज्ञानी बोल देंगे या किसी को सहजिया बोल देंगे। नो, दे मे हैव देयर ओन लेवल्स ऑफ इमोशंस, एक्सप्रेशंस ऑफ देयर इमोशंस। फोर्थ, आश्रम निरूपण, जजिंग वैष्णवस बेस्ड ऑन देयर आश्रम। जैसे फेमस स्टोरी रामानुजाचार्य के समय धनुर्दास की, धनुर्दास को रामानुजाचार्य ने जब भक्त बनाया और धनुर्दास वो जिस स्त्री में इतना आसक्त था उनसे विवाह कराने के पश्चात, तो जो सन्यासी डिसाइपल्स थे रामानुजाचार्य के, वो अपने आप को, क्योंकि सन्यास आश्रम इतना ऊंचा आश्रम है तो अपने आप को बहुत ऊंचा मानते थे, और वो धनुर्दास को कि ये व्यक्ति जो इतना आसक्त स्त्री में और इसको हमारे गुरु महाराज ने इतना समय देते हैं, इतना अटेंशन देते हैं, तो वो चर्चा करने लगे कि क्या है इस धनुर्दास में इतना। तो हमने ये स्टोरी बहुत बार सुनी है जब रामानुजाचार्य वो इनको कहते हैं, और ये लोग छोटी छोटी बात पर झगड़ा किया करते थे अपने ब्रह्मचारी सन्यासी आश्रम के अंदर। तो रामानुजाचार्य ने इनको कहा कि जाओ हम लोग ये धनुर्दास का पर्दाफाश करेंगे, बहुत सोना जेवर वगैरह इसकी पत्नी के पास होता है, जाके वो तुम चुरा के लाओ, फिर समझ में आएगा देखो ये कितना आसक्त है। तो वो लोग जाते हैं और वहां पर वो देखते हैं कि धनुर्दास नहीं है, धनुर्दास रामानुजाचार्य के पास है, तो उनकी पत्नी लेटी हुई है जेवर पहने हुए, और ये एक तरफ से जेवर चुरा रहे हैं, वो करवट बदलती है, और फिर ये लोग डर जाते हैं, भाग के आ जाते हैं कि शायद वो जग जाएगी। तो जब धनुर्दास को पता चलता है, और ये लोग छिपके सुन रहे हैं कि अभी देखते हैं क्या प्रतिक्रिया होगी जब इतने जेवर चोरी हो गए, तो वो डांट रहे हैं अपनी पत्नी को कि तुम इस प्रकार से करवट क्यों ली कि वो डर के चले गए, उनको सारे जेवर देने चाहिए थे, हो सकता है उनको कोई जरूरत होगी। और यहां पर रामानुजाचार्य ने इनके गमछे कोपिन वो अदला बदली कर दिए थे। तो ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, मेरा कोपिन तूने कैसे लिया, मेरा गमछा तूने कैसे लिया। तो ये लोग गमछे के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, और यहां पर धनुर्दास वो इस लेवल के गृहस्थ, तो यहां पर उन्होंने इस उदाहरण के द्वारा सिखाया अपने सन्यासी ब्रह्मचारी डिसाइपल्स को कि आश्रम के आधार पर निरूपण करना यह एक वैष्णव अपराध है। पांचवा अपराध अव्यय निरूपण, जजिंग वैष्णवस बेस्ड ऑन देयर बॉडीली डिफॉर्मिटीज। जैसे 10th कैंटो में वो शंखासुर जिसका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया, जो नंद महाराज को सर्प के रूप में, ये शंखासुर, तो जब भगवान ने इस शंखासुर का उद्धार किया तो फिर ये एक बहुत सुंदर देवता के रूप में आया, और फिर इसने अपनी कहानी बताई कि ये विद्याधर नाम का देवता था, और इसने ये अपने सौंदर्य पर बहुत गर्व करता था, बहुत सुंदर ये देवता था। तो एक बार विचरण करते हुए अंगिरा मुनि को इसने देखा, जो कि ऐसे ऋषि मुनि दिखने में सुंदर नहीं थे, थोड़े से कुरूप बदसूरत थे, तो मजाक उड़ाया और फिर शाप मिला कि ये सर्प के योनि में चला जाए। सो ही वॉज जजिंग बेस्ड ऑन बॉडीली डिफॉर्मिटीज। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव जिसको कुष्ठ रोग हुआ था कि आलिंगन किया, और ऐसा कुष्ठ रोग था कि पस निकल रहा था उसके पूरे शरीर से, और महाप्रभु ने उसे न केवल उसका कुष्ठ रोग, और इसलिए नहीं कि दिखाने के लिए कि मैं ऐसे व्यक्ति का भी उद्धार करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसी भक्ति थी वासुदेव उनकी भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति। सो जजिंग वैष्णवास बेस्ड ऑन देयर बॉडीली डिफॉर्मिटीज। एक बार मुझे याद है मैं एक प्रोग्राम से लौट रहा था, तो ग्रैंड रोड स्टेशन से रात के समय बारिश बहुत हो रही थी, तो मैंने एक टैक्सी ली, तो मेरे पीछे पीछे एक और व्यक्ति, उसने मुझे पूछा कि आप उधर जा रहे हैं चौपाटी टेम्पल इस्कॉन, मैंने बोला हाँ, बोला मैं भी उधर ही जा रहा हूँ आपके साथ आ जाओ, मैंने कहा आ जाओ। तो फिर बैठते ही मुझे कहा उसने शेयरिंग करेंगे, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं दे दूंगा, नहीं शेयरिंग करेंगे, आधा देंगे। तो हम लोग वहां पर पहुंचे तो रास्ते में वो मुझे पूछता है आपके भगवान को मुझे विग ऑफर करना है, विग गोपीनाथ जी। मैंने बोला आप कहाँ रहते हैं, बोला आपके मंदिर के पीछे ही रहते हैं, चौल में रहते हैं। मैंने कहा नहीं, हम लोग वो अमेरिका से मंगाते हैं, वो हम लोग यहाँ से विग यहाँ पर नहीं मिलता बम्बई में। नहीं नहीं कितना है, मैं उसके पैसे दे दूंगा। बोला ठीक है, आप हमारे डीटी डिपार्टमेंट से बात कीजिए आके। तो फिर मैंने पूछा कि लेकिन आपको विग क्यों ऑफर करना? मैं पहले बार सुना कि किसी को विग ऑफर करना है। जनरली आते हैं कि हमको कुछ ड्रेस ऑफर करना है, क्या कोई ज्वेलरी ऑफर करना है। मैंने विग क्यों ऑफर करना? मैं आपको सच बताऊं, मैं बहुत सालों से आप ब्रह्मचारी का मजाक उड़ाता था। बोला क्या? टकला, गंजा ऐसे बुलाता था मैं, और मेरे बाल उड़ गए। तो मुझे किसी ने बोला, तुम ये सब ब्रह्मचारी का मजाक उड़ाता ना, इनको टकला टकला बोलता है, तो तेरे बाल उड़ा दिए। तो उसका अटोनमेंट मुझे उसने बोला कि तू इनके भगवान को विग ऑफर कर। ये आइडियाज नहीं दे रहे आपको। अगला वैष्णव अपराध रामानुचार्य के अनुसार आलस्य निरूपण, जजिंग वैष्णवाज बेस्ड ऑन देयर बॉडीली हैबिट्स ऑफ ईटिंग स्लीपिंग एक्सेट्रा। जैसे एक वृंदावन यात्रा में जब हमने इनिशियली गोवर्धन में स्टे करने का अरेंजमेंट शुरू किया था, पहले हम लोग केवल गोवर्धन परिक्रमा के लिए एक दिन जाके वापस वृंदावन आ जाया करते, लेकिन फिर महाराज ने सजेशन दिया कि वी विल स्टे इन गोवर्धन, आधी यात्रा वृंदावन में आधी यात्रा गोवर्धन में। तो इनिशियली बहुत मुश्किल था सर अरेंजमेंट्स करना इतने डिवोटीज का। तो वहां से फिर वो शुरू हुआ कि गोवर्धन पूजा के दिन डिवोटीज कुकिंग करेंगे गोवर्धन उनके पूजा के लिए। तो सारे डिवोटीज जो भी कुकिंग करना चाहते हैं, छोटे छोटे चूल्हे बनाए, इतना कुकिंग, इतना भोग, और प्लस फीस्ट भी बना था, जो यात्रा का फीस्ट वो भी बना था। तो मुझे याद है गौरांग प्रभु ने देखा कि इतने आइटम्स भोग के बने हैं और फीस्ट के इतने आइटम्स हैं, तो ये खत्म कैसे होंगे इतने आइटम्स, ये कैसे खत्म होंगे? तो उन्होंने प्लानिंग शुरू किया कि जो जो गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, यहाँ वहाँ से आते हैं ब्रजवासी इत्यादि, उनको हम बांटते रहेंगे, क्योंकि इतना खत्म कैसे होगा। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही प्रसादम सर्विंग शुरू हुआ, डेढ़ घंटे में सब आइटम खत्म, और वो मटके के अंदर सब ऑफर किए हुए थे और हजारों की संख्या में आइटम्स थे। और खत्म किस प्रकार से खत्म हुए कि पूरा अंदर से चाट लिए गए वो मटके, और फीस्ट भी खत्म। तो जो डोनर थे, स्पॉन्सर थे उस दिन के फीस्ट के, वो लेट आए, तो अभी इनको कुछ तो उनको देना था कि आपने स्पॉन्सर किया है। तो वो ढूंढ रहे हैं कहीं पर कोई मटका गोवर्धन महाप्रसाद का नहीं मिल रहा है। तो ढूंढते 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 फाइनली एक डिवोटी जो लेट प्रसाद ले रहे थे, तो पूरा उनका फीस्ट का प्लेट था और 10 मटके उनके प्लेट के, जैसे हम लोग सजाते हैं ना भगवान के सामने, ऐसे 10 मटके उनके प्लेट के आसपास थे। तो इन्होंने देखा उनको और पूछे कि अभी इनको पूछना था कि एक मटका इसमें से मिलेगा। इन्होंने पूछा आप खा लेंगे इतना? तो डिवोटी इनको बोले कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं नहीं आप कर लेंगे ना, खा लेंगे। हाँ हाँ खा लेंगे, आपको क्या चाहिए? बोले नहीं, वो डोनर आए थे उनको ऐसे बोलो ना, ये लो एक मटका। तो वो बोल रहे थे मुझे कि उन्होंने देखा कि जो हम लोग इस्कॉन में आने के बाद जो हमारा स्टैमिना होता है, जैसे एक लाइफ मेंबर के घर पर प्रभुपाद को प्रसाद के लिए बुलाया था, तो ये अमेरिकन डिवोटीज और ये फर्स्ट टाइम ट्रेडिशनल इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, वो खाने के लिए उनको प्रभुपाद के साथ, तो पूड़ियाँ, एक्चुअल जो जैसे फूली हुई पूड़ियाँ वो मिल रही थी खाने के लिए। तो पूरा होने के बाद में वो एक डिवोटी पेट पकड़ कर वापस जब मंदिर में आए, पेट पकड़ कर, पेट दुख रहा है प्रभुपाद, पेट दुख रहा है। प्रभुपाद ने बोला, यस यू एट 25 पूरीज। तो वो शॉक हो गए, प्रभुपाद काउंट कर रहे थे। तो जैसे प्रभुपाद ने बोला यू एट 25 पूरीज, तो दूसरा डिवोटी वो हंसने लगा, हरि प्रभुपाद 25 पूरीज। प्रभुपाद बोले यू डोंट लाफ, यू एट 17 पूरीज। तो कई बार अगर हम देखते हैं कि स्टैमिना दोनों का, स्लीपिंग का, कि हम लोग कई बार इतने माहिर हो जाते हैं कि मैंने देखा है चलते चलते जपा करते हुए चलते चलते स्नोरिंग की आवाज आ रही, ठोरने की आवाज आ रही। तो इसको बोलते हैं आलस्य निरूपण, जजिंग वैष्णवस बेस्ड ऑन बॉडीली हैबिट्स ऑफ ईटिंग स्लीपिंग एक्सेट्रा। वास निरूपण, रिस्पेक्टिंग ओनली धामवासी, ये एक वैष्णव अपराध है कि जो धाम में रहते हैं बस वही प्रगत हैं जो ब्रजवासी हैं या दूसरे धाम के हैं, और बाकी जो धाम में वास नहीं करते वो वैष्णव नहीं हो सकते या वो डिवोटी नहीं हो सकते। जैसे वो फेमस पास टाइम है, प्रभुपाद के अमेरिकन डिसाइपल्स पहली दफा जब वृंदावन गए तो राधारमण मंदिर में दर्शन के लिए गए, तो राधारमण के पुजारी वो इनको आशीर्वाद दिए कि तुम जो भक्ति कर रहे हो इस अमेरिकन बॉडी में, तुम ये सब महामंत्र का जप और चार नियम का पालन पूरा करोगे अच्छी से इस जीवन में, तो अगले जन्म में तुम भारत में पैदा होगे और तब जाकर राधा रमन जी की पूजा अर्चना तुम कर पाओगे। तो बहुत खुश हो गए, उनको लगा ये आशीर्वाद मिला है। जाके प्रभुपाद को बोले कि प्रभुपाद ऐसा आशीर्वाद मिला, राधा रमन जी के पुजारी ने ऐसा आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? कि इस जन्म में तुम ये पूरी प्रचार और भक्ति करो तो अगले जन्म में तुम भारत में वृंदावन में पैदा होगे, राधा रमन के पुजारी बन सकते हो। तो प्रभुपाद ने बोले जाओ उनके पास और उस पुजारी को तुम बोलो कि तुम जो राधा रमन जी की पूजा कर रहे हो वो ठीक से करो, और ठीक से उनकी पूजा करने का नतीजा प्रतिफल क्या होगा कि तुम कैलिफोर्निया में जन्म लोगे और इस्कॉन ज्वाइन करके चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। दैट विल बी द हाईएस्ट रिवॉर्ड विच यू विल गेट आफ्टर योर डेडिकेटेड सर्विस टू राधा रमन जी। So judging Vaishnavas based on where they live. Bandhu Nirupan, considering one's own devotee family members as ordinary people. तो बहुत बार देखा जाता है कि यदि घर के सारे devotees हैं तो उनको बहुत ordinarily ले लेना, और कई बार होता है कि घर के devotees जब वो लोग क्लास देते हैं तो उनके जो family members बैठे होते हैं अच्छा सत्वगुण के बारे में बोल रहे हो, हम सब जानते हैं कितना सोते हो घर पे। तो समटाइम्स फैमिली मेंबर्स दे टेक अदर डिवोटी फैमिली मेंबर्स फॉर ग्रांटेड। जैसे श्रीमद् भागवत में भगवान यदुकुल में पैदा हुए तो जो यादव थे वो कैसे मानते थे कि अरे तो हमारे ही हैं। जैसे बहुत बार बंबई में भी हमने देखा टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह, वो लोग बोलते हैं हम आपके कृष्ण के वंश के हैं, यादव हमारा सरनेम, हमारे ही है वो। तो उदाहरण दिया गया है कि यादव जो भगवान को टेक इट फॉर ग्रांटेड लिए थे वो किस प्रकार से थे कि जैसे समंदर की मछलियां जब वो चंद्रोदय को देखती हैं और समंदर के वहां से चंद्रोदय होता है तो ये समंदर की मछलियां सोचती हैं कि ये देखो हमारा सहोदर है समंदर, वो जिसमें से हम पैदा हुई, और ये चंद्र जो है ये भी इसी समंदर से पैदा हुआ है तो हमारा सहोदर है। उस प्रकार से ये यादव जो हैं भगवान को, कृष्ण चंद्र को अपना सहोदर मानते थे. सो दिस इज द 8th ऑफेंस. प्रकाश निरूपण, रिस्पेक्टिंग ओनली बिग आचार्यज एंड गुरुज, कि केवल जो पहुंचे हुए डिवोटीज हैं केवल उनको हम रिस्पेक्ट करेंगे, और बाकी जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं या थोड़ा बहुत डिवोटी बने हैं, बन रहे हैं, स्ट्रगलिंग डिवोटी, उनको कोई वैल्यू नहीं देना. दिस इज अगेन, जैसे फिर से रामानुजाचार्य के जीवन की स्टोरी है कि उन्होंने अपने डिसाइपल्स को भेजा, एक रिच डिसाइपल एक पुअर डिसाइपल के घर पर, कि बोलो जाकर कि हम आ रहे हैं प्रसाद के लिए. और फिर जो अमीर डिसाइपल था वो तुरंत तैयारी में लग गया, परंतु वो जो गरीब डिसाइपल था उसने जो समाचार लेकर आए थे उनकी सेवा पहले करी, कि आप रामानुजाचार्य के पार्षद हैं हम आपकी पहली सेवा करते हैं. और फिर रामानुजाचार्य वो गरीब शिष्य के घर गए. 10th ऑफेंस, प्रकर निरूपण, हैंग आउट ओनली विद दोज वर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल डिवोटीज. कि केवल उनसे वैष्णव मैत्री बनाकर रखना, कि जो हमारे बाह्य आध्यात्मिक या भौतिक कार्यों में सहायक होंगे और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, रिसोर्सफुल है, तो उनके साथ उठना बैठना रखना ये सोचते हुए भक्ति करना, ये रामानुजाचार्य के अनुसार एक वैष्णव अपराध है. मैं जब जयपुर गया था तो वहाँ पर एक बड़े उद्योगपति हैं रूंगटा जी, तो उनके उनके कंपनी में प्रोग्राम था, वहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था हम लोगों ने. तो उनके पिताजी पुरुषोत्तम रूंगटा, तो उनके विषय में वो बता रहे थे कि वो बहुत बड़े राजस्थान के उद्योगपति और बड़े बड़े नेता उनसे मिलने आते थे, चीफ मिनिस्टर राजस्थान के और MLA MP मिलने आते. तो जब भी ऐसे बड़े मिलने आते थे उनको, तो पुरुषोत्तम रूंगटा वो उनसे 2-3 मिनट मिलते थे और उनको बिठा देते थे और उनको कहते थे आप बैठिए, आपको ये लोग सब खिलाएंगे पिलाएंगे, मैं आता हूं. और ये पुरुषोत्तम रूंगटा जिनसे मिलने के लिए चीफ मिनिस्टर MLA MP आए, पुरुषोत्तम रूंगटा जाते थे और ढूंढते थे कि इनके साथ जो इनका ड्राइवर, उनका सिक्योरिटी और बाकी लोग, वो लोग कहाँ हैं, और ये खुद जाकर उनको सर्व करते थे. और ये CM MLA MP को पुरुषोत्तम रूंगटा के सर्वेंट सर्व कर रहे हैं, और वो CM के सर्वेंट्स और ड्राइवर को मिस्टर पुरुषोत्तम रूंगटा सर्व कर रहे. तो जब इनको पूछा गया तो ये बोलते थे कि देखो तुम लोग जब आते हो तुम कहां कहां जाते होगे, तुमको कोई नहीं पूछता होगा. बोला हां साहब हमको कोई नहीं पूछता. तो इसलिए जब भी इनके घर पर ऐसे कोई बड़े सेलिब्रिटी आते थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति आते थे, तो उनके सर्वेंट्स और ड्राइवर्स वो खुद अपने हाथों से सर्व करते थे. 11th अपराध, वर्तन निरूपण, जजिंग वैष्णवास बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशंस. जैसे श्रीधर खोलवेच, वो क्या बेचते थे, केले के पत्ते और केले के वृक्ष से बनी हुई चीजें. तो राधानाथ महाराज बता रहे थे कि श्रीधर कोल्हवेच वो कौन व्यक्ति था, क्या करता था, किसी को नहीं पता था. जब पहली दफा चैतन्य महाप्रभु ने उनका नाम लिया तो सब एक दूसरे को देखने लगे कि कौन है ये. और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट राधानाथ महाराज ने कहा अपने प्रवचन में कि श्रीधर कोल्हवेच ये केले की सामग्रियां, केले के पेड़ की सामग्रियां बेचते थे. कहां? बंगाल में, जहां पर इतने प्रचुर मात्रा में सब कुछ अवेलेबल है, ये केले के पेड़ वृक्ष और फल पत्ते इत्यादि. तो वहां पर इसका बिजनेस करना, सबके घरों में इतने पेड़ हैं, तो कौन आके खरीदता होगा? केवल महाप्रभु. यदि महाप्रभु 2 घंटे उनके साथ रोज बिताते थे निमाई पंडित के रूप में, तो इमेजिन करो 2 घंटे. हम लोग 2 घंटे जप में भगवान से संपर्क इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, बहुत मुश्किलों से वो संपर्क होता है चैंटिंग के समय। यहाँ पर डायरेक्टली जो युगावतार हैं वो पैरों से चलकर श्रीधर कोलवेच को अपना 2 घंटा देते थे रोज का। तो इसलिए जजिंग एनीवन बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन, कि इसका ऑक्यूपेशन ये तो केवल एक किसान है या ये केवल एक क्लर्क, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये वो ऑक्यूपेशन जो डिस्क्रिमिनेशन होता है दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। फाइनली वो कहते हैं कि जो 12वां अपराध है दोष निरूपण, फाइंडिंग फॉल्ट्स विद हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज। पांडवों ने ये द्रौपदी के साथ विवाह कैसे किया, 5 लोगों ने एक से विवाह कैसे किया, या फिर जनरली लोग कि ये भगवान कृष्ण आपके ये 16,000 रानियों के साथ विवाह कैसे कर सकते हैं। तो प्रभुपाद अक्सर कहते द प्रॉब्लम इज नॉट कृष्णा हैविंग 16,000 गर्लफ्रेंड्स, द प्रॉब्लम इज यू डोंट हैव इवन वन, देयरफॉर यू आर जजिंग। सो एट द एंड लाइक टू कंक्लूड विद दिस ब्यूटिफुल कोट, डोंट जज मी बाय माय पास्ट, आई डोंट लिव देयर एनी मोर। तो श्री संप्रदाय में ये एक सुंदर स्टोरी है कि एक बार भगवान श्री विष्णु, जिनके एक तरफ श्री देवी और एक तरफ भू देवी रहती हैं, आपने देखा होगा दक्षिण भारत के विष्णु मंदिरों में श्री देवी और भू देवी, ये 2 देवियां भगवान की पत्नियां, 2 पत्नियां भगवान के दोनों साइड रहती। तो ये एक ऐसी घटना हुई कि एक व्यक्ति जो बहुत पाप कृत्य में लगा हुआ, वो भगवान से याचना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो भगवान विष्णु ने श्री देवी की ओर देखा कि तुम्हारा क्या कहना है, इसे कृपा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ये क्या क्या कुछ नहीं करके आया, हम सब जानते हैं। तो फिर श्रीदेवी ने कहा कि देखो भगवान, ये व्यक्ति चाहे कहीं पर भी कितना भी इसने पाप किया हो, अब लेकिन ये पश्चाताप कर रहा है, तो जरूर आपको कृपा देनी चाहिए इसे। तो भगवान ने फिर भूदेवी की ओर देखा, भूदेवी की ओर देख के पूछा कि तुम्हारा क्या मानना है, तुम्हारा मत क्या है। तो भूदेवी ने कहा कि मैं श्री देवी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। तो भगवान खुश हुए, हाँ देखो तो फाइनली ये जो पापी आया है इसको मुझे वापस भेजना होगा, क्योंकि ये योग्य नहीं होगा। भूदेवी शायद ये बोलेगी, भूदेवी बोलती है मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं श्री देवी से, यदि कोई आपके द्वार पर आया है तो उसमें दोष हो ही नहीं सकता, उसमें दोष हो ही नहीं सकता, वो आपके द्वार पर आया है अर्थात वो योग्य है आपकी कृपा का। तो भगवान और प्रसन्न हो गए, टेस्ट कर रहे थे। तो यहां पर दोनों श्री देवी और भू देवी मिलकर, इसलिए कहा जाता है कि हम हमारे कैसे भी अतीत को लेकर आए हों, हमारा होप कहां पर है, मदन गोपाल जी पर होप नहीं है, मदन गोपाल जी के बगल में जो देवी खड़ी हैं, राधा रानी जो खड़ी हैं, वो हैं हमारी आशा की किरण। इसलिए मदन गोपाल जी हमको देखकर सब हमारा कच्चा चिट्ठा जानते हैं कि क्या हम कहां से क्या कुछ कर आए हैं, हाँ, और उनके सामने आकर हम बैठ जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि तू, परंतु जब वो राधा रानी के पास देखते हैं तो राधा रानी कहती हैं कि अरे वो आया, जो इतने ब्रह्मांड भ्रमिते करते हुए वो आया है, यदि वो क्लास में सो भी रहा है, जप में अगर सो भी रहा है, तो राधा रानी मदन गोपाल जी से कहती हैं अरे कम से कम वो इस्कॉन के मंदिर में आपके सामने सो रहा है, कहीं और तो बिस्तर पर नहीं सो रहा। तो ये जब आशा के साथ, जब इतनी छूट डायरेक्टली भगवान के पार्षदों ने उनकी अंतरंगा शक्ति ने दे दी है। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि हु आर वी टू जज दोज हु कम एंड टेक शेल्टर ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। इसलिए हम कौन से मुद्दे को लिए थे, एक है इनसेंसिटिविटी और एक है समवन हु इज डीसेंसिटाइज। तो हम लोग सब वो डीसेंसिटाइज के मोड से यहाँ पर आए, बहुत हमको कुछ पता नहीं कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे जप करना चाहिए, कैसे नियमों का पालन करना चाहिए। बट इफ वी आर सिंसियर वी मे नॉट बी परफेक्ट बट वी कैन बिकम परफेक्टली सिंसियर, दैट इज विद इन आवर कैपेसिटी। सो वी आर परफेक्टली सिंसियर, एवरीथिंग एल्स कृष्णा एंड श्रीमती राधा रानी स्पेशली विल टेक केयर ऑफ। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स?
टू दंड, थैंक यू सो मच प्रभु फॉर द नाइस क्लास, वन ऑफ द बेस्ट क्लास एक्चुअली सो फार आई हैव हर्ड। सो प्रभु जी एक्चुअली पूछना था, जैसे आपने अंत में बताया कि वी आर बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, कि हम लोग बींग डिसेंसिटाइज्ड हैं और हमें अपने तरीके से प्रयत्न करना चाहिए सेंसिटिविटी सिंसियर बनने के लिए, टू बी परफेक्टली सिंसियर बनने के लिए। तो प्रभु जी एक्चुअली हम देख पा रहे हैं कि एक्चुअली आपने महाराज राधानाथ महाराज का इतना आपने सेवा किया अपने सर्विस पीरियड के दौरान, तो महाराज की सेंसिटिविटी और आपकी सेंसिटिविटी, इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसके कुछ दौरान आपने जो महसूस किया होगा महाराज के सेंसिटिविटी का, तो उसके कुछ एपिसोड्स कुछ हमें बताएंगे तो प्रभु जी एक्चुअली बेस्ट।
सबसे शाइनिंग क्वालिटी महाराज की सेंसिटिविटी की कि 6 साल उन्होंने मुझे टॉलरेट किया, मुझ जैसे क्रूड ब्रूट जिसको बोलते हैं रॉ डिसेंसिटाइज्ड व्यक्ति को टॉलरेट किया। ये मुझे आपने पूछा तो एक किस्सा याद आया, हम लोग मायापुर फरवरी में जो जीबीसी मीटिंग्स, तो उस समय महाराज के साथ महाराज का सर्वेंट ट्रैवल करता था और 15 दिन जीबीसी मीटिंग्स वहाँ पर मायापुर में हर साल जो होती है, तो महाराज जाते थे। तो हम लोग जस्ट अब कैलकटा पहुँचे, कैलकटा एयरपोर्ट से मायापुर 4 घंटा लगता है, तो मायापुर पहुँचे। अब 15 दिन महाराज और महाराज का सर्वेंट, तो मैं उस समय सर्वेंट था। तो महाराज बोले सो शिक्षाष्टकम 15 डेज यू विल हैव टू टॉलरेट मी। तो सोचो अभी आपके गुरु ऐसी लाइन बोल रहे हैं तो कैसा लगेगा। सो आई वॉज फीलिंग वेरी हम्बल्ड कि महाराज ऐसी बात बोल रहे हैं, लेकिन वो पूरा स्टेटमेंट नहीं था, कॉमा था उसके बाद। तो उन्होंने बोला शिक्षाष्टकम फॉर 15 डेज यू विल हैव टू टॉलरेट मी जस्ट लाइक आई विल टॉलरेट यू। तो कई बार ये देखा जाता है कि जो जितना भगवान के कॉन्शियसनेस में रहता है उतना वो सेंसिटिव होता जाता है, क्योंकि भगवान सबसे सुपर सेंसिटिव भगवान है। कि सोचो हमारा इस भौतिक संसार में हम कितने जन्मों से क्या कुछ नहीं करते हुए, भगवान को भूले हुए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भगवान आकर हमको कृपा देने, तो सोचो कितने सेंसिटिव हैं, कितने ब्रॉडली सेंसिटिव हैं भगवान। तो जो जैसे राधानाथ महाराज हैं या प्रभुपाद के और सीनियर सन्यासी डिसाइपल्स, गृहस्थ डिसाइपल्स, वो लोग जो अपने इतने 40-45 साल के साधना भक्ति के पश्चात भगवान के इतना निकट पहुंचते जा रहे हैं उनके डेडिकेशन और साधना के वजह से, तो सेंसिटिविटी भगवान की उनके अंदर रिफ्लेक्ट होती, दे आर रबिंग ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो एक इंस्टेंस मुझे याद है कि मैंने शायद पहले भी ये इंस्टेंस कोट किया, क्योंकि आपने पूछा इसलिए मुझे याद आया फिर से। तो वृंदावन से, नंदगांव से एक ब्रजवासी, बहुत सीनियर ब्रजवासी आए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में, और उस समय महाराज वो हर ट्यूसडे और थर्सडे, कभी कभी थर्सडे कभी कभी ट्यूसडे वो जाते थे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल प्रोग्राम करने के लिए। तो उस समय वो जो कार थी बड़ी टोयोटा कॉलेस, तो हुआ क्या कि हमारे द्वारकाधीश प्रभु, तो वो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, तो उनकी थर्सडे की ड्यूटी वर्शिप की सेवा, तो मैं भी था, और ये इनको भक्तिवेदांत हॉस्पिटल ले जाना है महाराज की गाड़ी में टोयोटा कॉलेज में। तो जैसे ही हम लोग अभी गाड़ी में बैठने वाले हैं तो द्वारकाधीश प्रभु आए कि मैं भी आ सकता हूँ, महाराज के साथ संग भी मिलेगा, और वैसे मैं ट्रेन से जा रहा था तो कार अगर जा ही रही भक्तिवेदांत हॉस्पिटल, तो मैंने कहा हाँ आ जाइए। तो अभी हुआ क्या कि महाराज आगे बैठे थे ड्राइवर के नेक्स्ट सीट, मैं पीछे, बड़ी गाड़ी है टोयोटा कॉलेज तो मैं एकदम पीछे, और बीच की पूरी सीट ये ब्रजवासी जो आए थे थोड़े वृद्ध थे तो इनके लिए रिजर्व रखी थी, तकिया भी रखा था क्योंकि ग्रैंड रोड से भक्तिवेदांत हॉस्पिटल 1.5-2 घंटा लगेगा, तो ताकि वो रास्ते में अगर उनको लेट ना हो। तो द्वारकाधीश प्रभु को पता नहीं था, तो वो आके ब्रजवासी के साथ बीच वाली सीट में बैठ गए। तो महाराज ने देखा, अब महाराज की सेंसिटिविटी देखिए कि द्वारकाधीश प्रभु भी सीनियर काउंसलर हैं, डॉक्टर हैं, और ये ब्रजवासी हैं, तो कैसे बोलें द्वारकाधीश प्रभु को कि आप इधर मत बैठिए, इनके लिए सीट है। हम में से अगर कोई होता तुरंत बोला ये क्या है, आप ट्रेन से आइए या पीछे बैठिए, कहीं और बैठिए, दूसरे टैक्सी में आइए। तो राधानाथ महाराज ने बोला, द्वारकाधीश प्रभु यू कम एंड सिट हियर इन ऑन माई सीट, I will go and sit with Shikshashtakam in the back, so that our Brajvasi guest can have the entire seat to lie down. Kya bola unhone? You come and sit here in the front, I will go back and sit with Shikshashtakam. Dwarkadish Prabhu bahar aaye, piche aaye, maine khol diya tha darwaja, piche wala. वो आके बैठे, मैंने ड्राइवर को बोला चालू करो गाड़ी। सो दिस इज वन इंस्टेंस विच आई रिमेम्बर, एक्सट्रीमली सेंसिटिव। माइक उधर ही है आपके पास।
हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बार गृहस्थों का एक प्रश्न रहता है कि क्योंकि हम फैमिली मेंबर्स में 5-6-7-8-9 लोगों के साथ में रहते हैं और हमें बहुत सारी ऑब्लिगेशंस रहती हैं क्योंकि हम हर एक रोल प्ले कर रहे हैं, और जब वो गृहस्थ किसी ब्रह्मचारी के साथ वार्तालाप करते हैं, शेयरिंग करते हैं जो कुछ भी सुख दुख, तो नॉर्मली उनका एक कमेंट रहता है कि प्रभु जी आप ना अच्छा है, आप अकेले रहते हो ब्रह्मचारी, और क्योंकि आप अकेले हो आपको फ्रीडम है और उस फ्रीडम की वजह से आप भक्ति भी बहुत स्पीडी और अच्छी तरीके से कर सकते हो, और क्योंकि हम अलग अलग बंधनों में और रिलेशनशिप में अटके हुए हैं इसलिए हमारे भक्ति का स्पीड उतना नहीं है। हालांकि मेरा खुद का मानना यह है कि वो रिलेशनशिप ही इतनी अच्छी तरीके से हमें स्ट्रांग एक फाउंडेशन और एक अच्छा फीलिंग देती है जिससे कि हम लोग इवन गृहस्थ आश्रम से भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सेल कर सकते हैं, और इसके वजह से पता नहीं मगर एक न्यूनगंड या वो एक मन में बैठ जाता है उनके कि क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम में है इसलिए हमारा स्पीड कम है, और क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो इनका स्पीड बहुत ज्यादा है। तो आप इसके ऊपर ब्रह्मचारी की साइड आप कुछ बता सकते हैं कि कैसे 30-40 ब्रह्मचारी जब एक साथ रहते हैं तो एक्सटर्नली वो फ्रीडम दिखता है मगर इंटरनली कितने ऑब्लिगेशंस रहते हैं? कैन यू कमेंट ऑन दिस?
अभी हाल ही में मैं ब्रह्मचारी क्लास दे रहा था तो उसमें मैंने ये बात कहा कि चाहे कोई गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, हर आश्रम के अपने अपने चैलेंजेस हैं, हर आश्रम के चैलेंजेस हैं, और कोई किसी आश्रम में हैप्पीली सिचुएटेड है इसका लक्षण क्या है? जैसे एक ब्रह्मचारी क्लास में राधानाथ महाराज ने कहा था, इफ यू आर हैप्पी टॉलरेटिंग the difficulties in brahmacharya ashram, you will be satisfied. Similarly, if one is happy tolerating the difficulties and challenges in grahastha ashram, then one will be satisfied and one will advance. To varnashram kya hai ki aapko challenges chunna hai to aapke psychophysical nature ke anusar आपने जिन चैलेंजेस को अपनाया है या चूज किया है उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, चैलेंजेस को तो चुनना है। तो एक ब्रह्मचारी होता है वो अपने साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार उस चैलेंजेस को चुनता है, जो ब्रह्मचारी लाइफ के चैलेंजेस है। जो गृहस्थ है वो अपने साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार वो चैलेंजेस को चुनता है। इसलिए तो रामानुचार्य ने जो इतना डिटेल दिया है कि हमें ये एक्सटर्नल्स, कि अभी चैतन्य महाप्रभु ने तो इन दोनों को एक्सटर्नल बोल दिया है, ना तो मैं सन्यासी हूं, ना तो मैं ब्रह्मचारी हूं, ना तो मैं गृहस्थ हूं, इन सबको एहो बाह्य बोल दिया है। तो ये सारे जो एक्सटर्नल्स हैं कि कौन कौन से व्हीकल में बैठा है, फाइनल डेस्टिनेशन पर कौन सही कॉन्शियसनेस में पहुंच रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, आप बोल रहे हैं कि अगर कोई फैमिली में अलग अलग जनरेशन्स के साथ रह रहा है और चैलेंजेस को डील कर रहा है, तो कभी आप ब्रह्मचर्य आश्रम में आके देखो कि अभी अगर एक फैमिली में आप देखोगे तो कम से कम वो एक भाषा बोलते हैं, एक प्रकार का खान पान उनका होता है, एक प्रकार का उनका अपब्रिंगिंग हुआ है, ऑलमोस्ट सेम, सब कुछ मैच होके ही तो वो पूरा परिवार बना है। परंतु ब्रह्मचारी आश्रम में आप देखोगे, यहाँ पर तो फिर भी इतना ज़्यादा लेवल्स में डिफरेंशिएशन नहीं है। मैं जब राधा गोपीनाथ मंदिर में था उस समय हम लोग 80-90 ब्रह्मचारी, तो एक है जिसको चपाती बिल्कुल पसंद नहीं है, दूसरा है कि जिसको चावल बिल्कुल पसंद नहीं है, और एक किचन जहाँ पर जो कुछ बनेगा वो आपको स्वीकार करना है। उसके ऊपर सब लोगों का अलग अलग स्टैंडर्ड्स, क्लेनलीनेस का स्टैंडर्ड्स अलग, बातचीत करने का स्टैंडर्ड अलग, रहन सहन खान पान सब कुछ अलग, सेंसिटिविटी इनसेंसिटिविटी डिसेंसिटाइज सब कुछ। इतनी वैरायटी में डेफिनेटली बहुत बार डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, नोकझोंक, अनबन ये ज्यादा दिखने को मिलती है। इसलिए बहुत बार राधानाथ महाराज हमको क्लासेस में बोलते थे, व्हाट तपस्वीज एंड योगीज वुड परफॉर्म ऑस्टेरिटीज इन सत्ययुग। विश्वामित्र मुनि वो सर्दियों में बर्फीले पानी में जाकर और गर्मियों में आग जलाकर, मतलब व्हाट दे यूज टू डू ऑस्टेरिटीज फॉर यू ब्रह्मचारीज इन कलयुगा, द ऑस्टेरिटीज टू लिव टूगेदर हैप्पीली। एक्सटर्नली आप देखो इस्कॉन के ब्रह्मचारी आश्रम में कोई एक्सटर्नल ऑस्टेरिटीज नहीं है। ये ब्रह्मचारी आश्रम को बहुत से गृहस्थ आके देखते हैं, बोलते हैं हम तो हमारे घर पे भी इतना ऐसे एमिनिटीज नहीं है। तो एक्सटर्नली ब्रह्मचारी आश्रम इस्कॉन का बहुत कंफर्टेबल है, बट सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि
ये जो डिफरेंसेस हैं लाइफस्टाइल के, ओपिनियंस के, हैबिट्स के, ये सारे जो डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस को ओवरलुक करते हुए मैच्योरिटी के साथ रहना, हाँ उसमें जो आप फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो ये एक फ्रीडम है, ये मैं फ्रीडम कहूंगा कि अगर मान लो 30 ब्रह्मचारी हैं या 80 ब्रह्मचारी हैं, मेरा किसी एक ब्रह्मचारी के साथ नहीं जमता, तो मेरे पास 29 और हैं। लेकिन दूसरे आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में, अगर किसी पति का पत्नी के साथ नहीं जमता तो और 29 नहीं है। तो हाँ उसमें थोड़ा सा देखो, जैसे मैंने कहा कि गृहस्थ आश्रम का अलग फ्रीडम है, ब्रह्मचारी आश्रम के अलग लिमिटेशंस हैं कि उनको अगर कहीं जाना है परमिशन लेके जाना पड़े, अभी फॉर्म निकाला है ब्रह्मचारी, कोई अगर 6 घंटे से ज्यादा बाहर जाएगा तो उसको फॉर्म भरना है कि मैं यहाँ यहाँ फलाने फलाने जगह जा रहा हूँ और इतने टाइम पे निकलूंगा, इतने टाइम पर वापस आऊंगा, रिपोर्टिंग वगैरह, अटेंडेंस मंगल आरती का आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे अटेंडेंस होता मंगल आरती का, वो अगर उन्होंने वो तीसरा शंख बजने से पहले आए नहीं तो उनको 108 बार महामंत्र लिखना है, वो भी जपा के समय, और ऐसा नहीं कि वो करके उसको जेरोक्स कॉपी निकाल निकाल के पहले बना के रखें, उसको वहां पर करना है। तब गृहस्थ आश्रम में ये सब होगा नहीं कुछ, तो इस दृष्टिकोण से कोई ब्रह्मचारी सोचे क्या फ्रीडम है, मंगल आरती आना ही जरूरी नहीं है उनके लिए, तो आए या नहीं आए क्या फर्क पड़ता है, कोई बोलने नहीं वाला, घर पे कोई बोलने नहीं वाला कि मंगल आरती नहीं गए 108 बार लिखो, तो वो कुछ अलग प्रकार का फ्रीडम होगा। यहां पर अलग प्रकार के लिमिटेशंस हैं, तो हर एक आश्रम के अपने अपने चैलेंजेस हैं। वर्णाश्रम मतलब यू पिक योर फेवरेट चैलेंजेस, दैट्स इट, एंड देन वी हैव टू गिव अप दैट आश्रम टू एंटर इनटू द सुप्रीम शेल्टर, आश्रय ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। जैसे जनानिवास प्रभु ने हमको बोला था ब्रह्मचारी को, फर्स्ट उन्होंने ब्रह्मचारी क्लास जब चौपाटी में हमको दी थी तो उन्होंने कहा था, सो वी ऑल ब्रह्मचारीज, वो खुद ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने कहा वी ऑल ब्रह्मचारीज, अवर गोल इज टू गिव अप ब्रह्मचार्य, बोले टू गिव अप ब्रह्मचार्य टू एंटर इन टू गोलोक वृंदावन वेर देर इज नो ब्रह्मचारी आश्रम, एवरी वन इज अ गृहस्थ, सब गोलोक वृंदावन जा रहे हैं, वहां पर ये सैफरॉन धोती कुर्ता कहीं नहीं दिखता है ही नहीं, सब लोग गृहस्थ हैं वहां पर। So the goal is not even grahastha, not even brahmachari, gopi bhartur padakamalayor das dasanu das, वो हमारा goal है। हाँ, और उसको हासिल करने के लिए जो वाहन हमारे लिए सुटेबल है, किसी के लिए गृहस्थ आश्रम का वाहन सुटेबल है, किसी के लिए ब्रह्मचारी आश्रम का वाहन सुटेबल है, तो अपने वाहन के अनुसार हमको रास्ता सही पकड़ना है, वाहन वो हमारे अनुसार होगा तो वो वाहन पे चलते हुए फाइनली डेस्टिनेशन पर वहाँ पर पहुँचना है। जैसे हम लोग कई बार मंथन के लिए पहुँचते हैं ना, तो कई डिवोटीज हैं वो एक साथ इतने सारे गाड़ी में बैठ के जाते हैं, कई लोग हमारे बड़ा जो बोलेरो है उसमें बैठ के आ जाते हैं, कई टू व्हीलर पे आ जाते हैं, साइकिल पे भी आते हैं क्या? तो चाहे कोई साइकिल पे आए, चाहे कोई BMW में आए, चाहे कोई भी वाहन पर आए, वहां पर फाइनली हमको हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मेरे अनुसार ये जो आपका क्वेश्चन है, ये हर समय ये जो कलयुग के अंदर विद इन द आश्रम इतना डिफरेंशिएशन आपको दिखेगा, फॉरगेट अबाउट डिफरेंशिएशन इन द आश्रम, बट विद इन द आश्रम आपको इतना डिफरेंशिएशन दिखेगा कि ब्रह्मचारी के अंदर आप देखोगे कि कई ब्रह्मचारी हैं जो कि एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट भक्ति का बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, और गृहस्थों में आप देखोगे कि गृहस्थों के अंदर कई गृहस्थ हैं जो कुछ भक्ति के एस्पेक्ट्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जैसे कि कई गृहस्थ आप देखोगे प्रीचिंग का उनके अंदर स्पिरिट बहुत है, तो वो ट्रैवलिंग प्रीचिंग बहुत करते हैं। कई गृहस्थ हैं जो साधना के ऊपर जोर देते हैं, कई गृहस्थ हैं जो अपने परिवार की परवरिश देख रेख उसके ऊपर जोर देते हैं। तो आप देखोगे कि गृहस्थों के अंदर ब्रह्मचारीज के अंदर जैसे फ्लेवर्स हैं अलग अलग। कई हैं जिनको डीटी वर्शिप में इतना इंटरेस्ट है कि उनको पूरा नरिशमेंट डीटी वर्शिप में मिल रहा है। कई ब्रह्मचारीज हैं उनको पता ही नहीं है कि डीटीज में ऑफरिंग कैसे करते हैं, आरती कैसे करते हैं, श्रृंगार कैसे करते हैं। बहुत से ऐसे ब्रह्मचारी हैं इस्कॉन के अंदर, वो बिल्कुल डीटी वर्शिप जानते नहीं। क्यों? क्योंकि वो इतना प्रचार में ट्रैवलिंग प्रीचिंग करते रहते हैं। और कई जो पूरा डीटी वर्शिप में हैं उनको ट्रैवलिंग प्रीचिंग के बारे में कुछ पता नहीं। सो विद इन ईच आश्रम देयर इज सो मच वैरायटी अकॉर्डिंग टू साइको फिजिकल नेचर, अपने स्वरूप के अनुसार। यस प्रो,
हरे कृष्ण प्रभु। सर्वप्रथम बहुत बहुत तह दिल से आपके धन्यवाद कि इतना परिपूर्ण, उपदेशपूर्ण, महत्वपूर्ण ऐसा आपने आज क्लास दिया, जिसमें वो डेडली कॉम्बिनेशंस 5 प्रकार के और 12 अपराध इनके बारे में आपने अवेयर कराया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम प्रश्न ये है कि आज के क्लास में बहुत सारे विषयों को आपने हाथ डाला, बीच बीच में मुझे स्वामी समर्थ रामदास जी की याद आई आपकी जगह पे, तो आज के इस क्लास में लिमिटेड इंटेलिजेंस से जहां पे कंक्लूजन पर पहुंच पाया, तो उसमें ये मैंने पाया कि हमें बुद्धिपूर्ण संवेदनशीलता की तरफ बढ़ना है, वो हमारे में बढ़ानी है, और आत्म परीक्षण की वृत्ति, क्योंकि अब तक जो क्वेश्चन आंसर्स हुए थोड़ा वो समाज की संवेदनशीलता से संबंधित थे। अब कहीं पे ऐसे दिखाई देता है कि कोई वैष्णव या किसी के घर पे कोई देहांत हुआ है या कोई रुग्ण है, तो हम में से कई लोग जा नहीं पाते और वो उधर दुखी होते कि हमारे पास कोई नहीं आ रहा है। तो ठीक है, ये हम इंडिविजुअली हम लोग खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, पर जहां तक आज की क्लास का वो जो एक सार मुझे दिख रहा था कि आत्म परीक्षण की मेरे जैसों को बहुत जरूरत है संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए, तो इसके लिए कैसे करें? क्या आपने क्लास में बहुत सारे आंसर्स दे दिए, फिर भी स्पेसिफिकेशंस की अपेक्षा करता हूं, कृपया करके बताएं।
सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ एनालिसिस कैसे करें, ये पूछ रहे हैं ना?
हाँ, मतलब संवेदनशीलता जो बढ़ानी है उसके लिए आत्म परीक्षण की भी जरूरत है और इम्प्लीकेशन की भी, इम्प्लीमेंटेशन की। तो कभी कभी हम लोग सिर्फ सोचते रहते हैं हमने ये करना है वो करना है, खुद के बारे में बहुत सेंसिटिव होते हैं, खुद के प्रति जो बाहरी अपराध हुए हैं लोगों से उसके प्रति हमेशा सोचते रहते हैं, पर हमारे से जो दुखते हैं सामने वाले से, सामने वाले के प्रति अपराध होते हैं वो कहीं पे हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं। आत्म केंद्रीय वृत्ति बढ़ती है, आत्म परीक्षण की वृत्ति कम होती है, तो आत्म परीक्षण बढ़ाने के लिए क्या करें?
सबसे पहले जब हम भक्तों के साथ डील कर रहे हैं या किसी परिवार में परिवार वालों के साथ डील कर रहे हैं या समाज में अन्य मनुष्यों के साथ डील कर रहे हैं, तो उसमें हमारे रिलेशनशिप के भी अलग अलग लेवल्स और इंटेंसिटी होंगे। जैसे कि यदि एक दंपति है तो पति पत्नी उनका जो रिश्ता है वो सबसे इंटेंस है, फिर उनका अपने ससुराल वालों के साथ जो रिश्ता होगा वो थोड़ा कम इंटेंस होगा, इवन फिजिकली भी उनसे उठना बैठना मेल जोल वो कम होता है जितना कि पति पत्नी का एक साथ होता है। फिर बाद में और एक्सटेंडेड जो रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ जो रिश्ता होगा वो थोड़ा और थोड़ा ढीला और हल्का होता जाएगा। तो आप देखो कि अगर वो फैमिली ट्री आप लोगे, चाहे वो डिवोटी फैमिली ट्री हो चाहे आपके खुद का फैमिली ट्री हो, खानदान का, उसके अंदर लेवल्स होंगे और लेवल्स के अनुसार आपकी इंटेंसिटी होगी कि आपको उनके साथ डीलिंग्स कैसी करनी है। तो इसलिए जो सबसे क्लोजेस्ट हैं उनके साथ आपको सबसे सेंसिटिवली डील करना है। अगर सेल्फ एनालिसिस आपको करना है तो जो सबसे क्लोजेस्ट हैं उनके साथ, जैसे इवन ब्रह्मचारी आश्रम में देखा जाता है कि एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में अगर तीन ब्रह्मचारी एक साथ सेवा कर रहे हैं तो वो सबसे क्लोज उनको डील करना एक दूसरे के साथ। तो इसलिए उनके अंदर सेंसिटिविटी होना वो बहुत जरूरी है एक दूसरे के प्रति। तो अभी उसका सेल्फ एनालिसिस कैसे करना है कि आपको सबसे पहले जिसके साथ आप बहुत क्लोजली डील कर रहे हैं उस व्यक्ति को जानना है। आप उस व्यक्ति की तरह बिहेव नहीं कर पाओगे क्योंकि वो व्यक्ति भगवान का एक स्पेशल क्रिएशन है। इवन जुड़वा वो अपना अलग अलग साइकोफिजिकल नेचर लेके जीते हैं, चाहे वो एक ही समय पैदा हो, एक ही जैसे दिखते हो, आइडेंटिकल ट्विंस हो, बट स्टिल देयर माइंडसेट्स आर नॉट आइडेंटिकल। फेस सब कुछ आइडेंटिकल होगा, एवरीवन इज स्पेशल, एवरीवन इज यूनिक। सो टू नो अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स यूनिकनेस, इज एक इंटरेस्टिंग कोट। ये जो मैंने ये कोट दिखाया ना लास्ट का, डोंट जज मी बिकॉज ऑफ माई पास्ट, तो एक और इंटरेस्टिंग कोट उसमें ये बताया गया है कि डोंट जज मी बेस्ड ऑन माई सिन जस्ट बिकॉज यू सिन डिफरेंटली। थोड़ा स्ट्रांग है ये। तो जैसे मुझमें खामियां हैं या मुझमें अच्छाइयां हैं, वैसे अगले व्यक्ति में भी खामियां और अच्छाइयां हैं, है कि नहीं? सो द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद द अदर पर्सन हु इज डिफरेंट फ्रॉम यू, द बेस्ट वे टू कनेक्ट इज टू वैल्यू व्हाट द अदर पर्सन वैल्यूज, बिगिन विद दैट। और जो डिस्क्रिपेंसीज या हेल्पलेस सिचुएशन दूसरे व्यक्ति की हैं, ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन दैट शूज कि यदि आपको वैसा जीवन जीना पड़े जो सामने वाला व्यक्ति जी रहा है, जिससे आप बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं, तो क्या आप इतने सेंसिटिव होंगे और इतने केयरफुल होंगे कि नहीं होंगे खुद के बारे में? सो सेल्फ एनालिसिस की शुरुआत उससे ही कर सकते हैं कि हम अपने आप को उस व्यक्ति के शूज में डालकर, इसलिए बोलते हैं ना द शू विच फिट्स यू बाइट्स द अदर पर्सन। आपका शू साइज जो है, आपका शू आपको फिट हो रहा है। अभी जैसे हाल ही में मुझे नजदीक का चश्मा लगा है इतने सालों बाद, तो अभी वहां पर एक बार ऐसा हुआ एक प्रोग्राम में, ये मैं अभी आदत नहीं तो मैं लेके नहीं जाता था, भूल जाता था चश्मा, तो उधर जाके जब सामने किताब आई दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक डिवोटी ने अपना चश्मा ऑफर किया, तो अब वो लगा के मैंने देखा तो जो पहले थोड़ा बहुत दिख रहा था वो भी नहीं दिख रहा है। तभी मैं इसके बारे में सोच रहा था कि वो डिवोटी, उसने अपना चश्मा दिया, जैसे अभी आप चश्मा पहने, अभी यदि मैं मेरा चश्मा आपको दूं कि राहुल भगत प्रभु इसे पढ़ो, और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अगर मैं इनसेंसिटिव हूं तो मैं क्या बोलूंगा, अरे मुझे दिखाई दे रहा है, तुमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा, व्हाई कांट यू सी, आई कैन सी, बिकॉज इट इज मेंट ओनली फॉर माई आईज। हाँ, कई बार होता है कि एक ही नंबर के दो व्यक्ति होते हैं जिनको एक ही नंबर का चश्मा, वो इंटरचेंज कर सकते हैं, बट कई बार एक नंबर भी इधर उधर हो, सो योर स्पेक्टिकल्स आर मेंट फॉर योर आईज, माय स्पेक्टिकल्स आर मेंट फॉर my eyes. Your shoe size will fit your foot. And my shoe size will fit my foot. इसलिए हम अगर ये सोच के चलें कि सब लोग भगवान के क्रिएशन में उनके स्पेशल साइज और फीचर्स के अनुसार बनाए हुए हैं एंड दे आर प्लीजिंग कृष्णा इन देयर ओन वे एंड सर्विंग कृष्णा इन देयर ओन वे एंड आई हैव टू ऑल्सो सर्व कृष्णा एंड प्लीज कृष्णा इन माई ओन वे लेट अस डू इट टूगेदर. ये है संकीर्तन. दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन चैंटिंग. कि यदि कोई करताल बजा रहा है तो उसको करताल की जो वॉल्यूम है उतनी रखनी है. कोई वॉम्पर बजा रहा है तो वो वॉम्पर की वॉल्यूम को रखेगा. कोई मृदंग बजा रहा है तो वो मृदंग की वॉल्यूम को रखेगा. कोई लीड सिंगिंग कर रहा है और ये सबको मिलके लीड सिंगिंग से कोऑर्डिनेट करना है. अगर सब लोग अपना अपना कि मैं वॉम्पर का मतलब है सबसे ज्यादा वॉल्यूम में और लीड सिंगिंग का आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा है. सो दैट इज नॉट कॉल्ड सिम्फनी, इट्स कॉल्ड कैकोफोनी. ऑर्केस्ट्रा मीन्स प्रॉपर सिम्फनी ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इज कॉल्ड संकीर्तन. सेंसिटिविटी इन संकीर्तन. हरी बोल.
Hare Krishna. Prabhuji, thank you for such a nice class. It is a small analysis which I have made about, you know, people, especially two categories, sensitive people and insensitive people. So what I have understood about some insensitive people is they are highly sensitive when it comes to taking reciprocation from someone. But when they have to reciprocate, they are very insensitive. They don't even bother as to what is happening with the other person. So, you know, I was thinking, if someone is sensitive and understands what sensitivity is about oneself, it is very natural that one will be sensitive to others. So how come it happens that someone who is sensitive for getting is insensitive while giving?
Well, these are the people who are consciously selfish. Some people are unconsciously selfish. They are selfish, they don't even know that they are selfish. It's just inherently, it's in their system. But some people, they are consciously and deliberately selfish. And therefore, deliberately, they are insensitive to others. So that's a very materialistic approach. Those people come just like, now we are talking about people who are having demoniac quality. These are like, to some extent, you know, that everything should be for my pleasure. Ravana, Hiranyakashipu, you know, like Tukaram Maharaj's example. Tukaram Maharaj is talking about that butcher who is so sensitive when he is sharpening the बुचर्स नाइफ. कसाई है ना, कि उसकी उंगली भी नहीं कटनी चाहिए, खुद की उंगली भी नहीं कटनी चाहिए, उसके लिए वो इतना केयरफुल रहता है. लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि वो जिसका गला काट रहा है, वो उस खून बहा रहा है उसका, उसके बारे में उसको कोई संवेदना क्यों नहीं. सो दिस इज very high degree of being selfish, that no matter what happens, for my sake everyone should madarthe takta jivita. Duryodhan ne kya bola ki mere liye ye sab apne pran nyochhavar karne chahiye. So that is comes in the category of Duryodhan. So for these kind of people, then Krishna has to arrange Kurukshetra war.
Just last one point. Sometimes so,
अभी जैसे वो हिरण को मारा, उसके अंदर गया ना वो. तो रोज इतने गाय को मार रहे हैं, इतने बकरियों को मार रहे हैं, उसके बारे में कोई संवेदना नहीं दिखा रहा है कि हिरण के पीछे संवेदना इतनी हो रही है कि इसने हिरण को मारा उसको अंदर डालो। लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि टाइगर हिरण को ही मारेगा ना। लोगों ने ये प्रश्न उठाया कि टाइगर जब उसको अदालत में ले गए तो ये बोला गया कि अरे टाइगर है, टाइगर हिरण को मारेगा ना। तो जज भी बहुत बुद्धिमान था, जज ने बोला कि अगर टाइगर इतना खूंखार होता है तो उसको पिंजरे में बंद रखना चाहिए। सो दिस इज कलयुगा'स हिपोक्रेसी। एट वन प्लेस यू विल बी सो सेंसिटिव टुवर्ड्स यू नो टुवर्ड्स डियर्स टुवर्ड्स डॉग्स यू नो इन वेस्ट and then every day, day in and day out, you are killing so many cows. And where is the sensitivity over there? Nothing against dogs and deers. You had something?
Yeah, just last one point. Even people who are very sensitive, they become problem for their near and dear ones.
Problem?
Yeah, so like they have to be handled that way. Because they are sensitive, so you know how to solve that particular problem.
See, sometimes if you sensitive people, if you want to be peaceful, you handle them sensitively. Because if you don't handle them sensitively, their sensitivity will take away your peace. So in the good interest of both the parties, let's be, maybe it might not be 100%, but at least come to one common conclusion, ki to what extent one has to extend oneself. And sometimes some people who are very sensitive should also be sensitive that the other person is not so sensitive. And the other person has limitations. The other person might be tone deaf. इसलिए कई बार हम लोग कीर्तन में बहुत बार होता है कि मैं जब ऐसे नए ग्रुप होते हैं वेस्ट में या कहीं पे, तो होता क्या है कि वो लोग बहुत enthusiastically कि कोई करताल नहीं बजा रहा तो दो तीन लोग एक साथ करताल उठा के बजाना शुरू करते हैं और आप माइक पे बोल भी नहीं सकते कुछ। वो लोग enthusiastic हैं but they are desensitized. Totally. So you have to tolerate. And sometimes you are singing some melody and they are totally different, their own melody. Chorus mein wo log apni melody ga rahe hain. Sometimes I have to change my melody then. Wo jo ga rahe hain wo melody mujhe gaani padti. So there will be many instances where, you know, it is very good also, healthy also, that if we are super sensitive and somebody else is not, then that will make us more tolerate, increase our tolerance muscles, make us more tolerant, patient. And this is what material world, living in material world is. Jo Maharaj ne bola na Mayapur mein. Oh. So I'll tolerate you, you tolerate me. So we have to tolerate. So we'll discuss more. Abhi jo ये जो चल रहा है सीरीज अपना कई कई का, सो नेक्स्ट इसके बाद का जो लेसन है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, आपको हेड्स अप दे रहा हूं मैं अगले रविवार के लिए। तो नेक्स्ट लेसन इज हाउ अटैचमेंट मेक्स वंस हार्ड हार्टेड, नॉट डिटैचमेंट। जनरली इस संसार में क्या देखा जाता है कि जो कोई बैरागी विरक्त हैं वो लोग बैराग्य और विरक्ति के वजह से हार्ड हार्टेड दिखते हैं ना, बट इट इज अटैचमेंट विच मेक्स वंस हार्ड हार्टेड, नॉट डिटैचमेंट। एंड दैट्स व्हाट कैकेयी हैड बिकम, हार्ड हार्टेड टू अनदर लेवल। सो दैट वील डिस्कस नेक्स्ट संडे। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की